Let us bow our heads just a moment for prayer. Our gracious heavenly Father,
हम अपने सरों को कुछ लम्हात के लिए दुआ में झुकाते हैं। हमारे रहीम आसमानी बाप और हमारे खुदावन मुनज्जी, ये दर हकीकत एक अजाज है कि हम तेरे पास पहुंच सके हैं। जब हमने इस पुरजोश गीत को तू कितना अजीम है सुना है, तो हम जोश से भर गए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तू अजीम है, और हम दुआ करते हैं कि तेरी अजमत आज सुपहर जब हम बोलें तो नए तौर से हम पर जाहिर हो। बहुत बरसों में ये पहली बार मेरी किस्मत में आया है कि अपनी जिंदगी के माजी में झांक सकूं। खुदावंत मैं दुआ करता हूं कि तू इस घड़ी में मुझे कुव्वत और जिस चीज की भी जरूरत है मुझे दे, और मेरी जिंदगी की बहुत सी कोताहियां दूसरों के लिए सीढ़ी के पायदान साबित हों, ताकि वो तेरे करीब हो जाएं। खुदावंत ये बख्श दे कि गुनहगार वक्त की रेत के कदमों के निशान देख सकें और वो तेरी तरफ रुजू लाएं। हम ये सब कुछ खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप तशरीफ रखें। मुझे खुशी होगी। ठीक है जनाब, शुक्रिया। इस बुजुर्ग मुकद्दस इंसान भाई ग्लोवर को मैं चंद सालों से जानता हूँ। गुज़िश्ता रात मुझे उनके साथ क़याम करने का एजाज हासिल हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि वो कुछ अरसा आराम करते रहे हैं और अब 75 बरस की उम्र में दोबारा खुदावन की खिदमत में वापस मुड़ रहे हैं। ये बात सुनने के बाद मेरी थकावट पहले की निस्बत आधी रह गई है। मैंने सोचा कि मैं थक गया हूँ, लेकिन अब मुझे यकीन है कि मैं थका नहीं हूँ। यहाँ उन्होंने लफाफों में रुमाल बंद करके दुआ के लिए मेरे आगे रखे हैं, और इसी तरह वो पहले ही अंदर पीछे वहाँ रखे हुए थे। अब जो लोग रेडियो के जरिए सुन रहे हैं या यहाँ मौजूद हैं, और अगर वो इन दुआ वाले रुमालों को चाहते हैं, तो आप एंजलिस टेंपल वाले हर वक्त लोगों को भेजते रहते हैं। आप एंजलिस टेंपल वालों को लिख सकते हैं और वो इस पर दुआ करेंगे, क्योंकि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये कलाम की बात है, ये खुदा का एक वादा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इन पर दुआ करूँ, तो मुझे ऐसा करके खुशी होगी। आप मुझे पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर 325 जेफरसन व्हील के पते पर खत लिख सकते हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं, JEFFERSONVILLE, जेफरसन व्हील, इंडियाना। या अगर आप पोस्ट बॉक्स याद ना रख सकें, तो सिर्फ ये लिख दें, जेफरसन व्हील। ये एक छोटा सा शहर है जिसकी आबादी तकरीबन 35,000 है। हर कोई मुझे यहाँ जानता है, और रुमाल पर दुआ करके आपको भेजकर हमें खुशी होगी। और अब हमें इस मैदान में बहुत कामयाबी हासिल हुई, क्योंकि आपको इसके साथ एक छोटा सा फॉर्म नुमान खत भी मिलेगा कि पूरी दुनिया में लोग हर सुबह 9 बजे और 12 बजे और 3 बजे दुआ करते हैं। और आप पूरी दुनिया का हिसाब करके तसव्वुर कर सकते हैं कि उन लोगों को रात के कौन से पहर उठकर दुआ करनी पड़ती होगी। इसी तरह ये लाखों बल्कि करोड़ों इंसान एक ही वक्त में इस खिदमत के लिए और आपकी बीमारी के लिए खुदा से दुआ कर रहे होते हैं, तो खुदा उन्हें रद्द नहीं कर सकता। और अब इस तरह हम, जैसे कि मैं कहा करता हूँ, हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं है। हम एक सिक्के के बराबर भी दौलत का इंतजार नहीं कर रहे। हम सिर्फ, अगर हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो हम यहाँ इसी काम के लिए हैं। और आए हम, कोई और शख्स रुमालों का एक ढेर ला रहा है। अब अगर आपके पास रुमाल ना हो जो आप भेजना चाहते हैं, तो ठीक है, तो फिर आप किसी तरह हमें जरूर लिखें। अब अगर आपको इस वक्त इसकी जरूरत ना हो, तो इसे ईमाल की किताब 19वें बाब में बाइबल के अंदर रख दें। ये आपको एक छोटे से सफेद रिबन की शक्ल में भेजा जाएगा, और साथ ही हदायात लिखी होंगी। आपको पहले क्यों कर अपने गुनाहों से इकरार करना चाहिए, और शुक्रिया। और अपने गुनाहों का इकरार कैसे करना होगा? आपको खुदा से कभी भी कुछ हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जब तक कि आप खुदा के साथ दुरुस्त ना हों, समझे? और फिर इसमें हदायत लिखी हुई हैं। کہ آپ اپنے ہمسایوں اور اپنے خادموں کو بلائیں۔ اگر آپ کے دل میں کسی کے خلاف کوئی بات ہے تو پہلے جا کر اسے درست کریں، پھر واپس آئیں اور پھر دعا کریں اور اپنے گھر میں عبادت کروائیں اور اس رومال کو اپنے اندرونی لباس کے ساتھ منسلک کر لیں اور پھر خدا پر بھروسہ رکھیں۔ اور این انہی 3 گھنٹوں کے دوران روزانہ پوری دنیا میں لوگ دعا کر رہے ہوں گے۔ یہ دعا کی ایک عالمگیر زنجیر ہے، اور اب یہ رومال آپ کو بالکل مفت بھیجے جاتے ہیں، اور اب اس کے بعد ہم آپ سے کچھ تقاضا کرنے یا اپنا آئندہ پروگرام بتانے کے لیے دوبارہ نہیں لکھیں گے۔ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، مگر ہمارے پاس آپ کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے، سمجھے؟ بس آپ، یہ آپ کا پتہ حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ محض ایک قیام کی جگہ اور خداوند کی خدمت ہے جسے ہم جاری رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے اب اپنے سروں کو جھکائیں، اور اگر آپ کسی جگہ ریڈیو کے ذریعے سن رہے ہیں اور آپ کے پاس رومال پڑے ہیں تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو آپ خود اپنا ہاتھ رومال کے اوپر رکھ دیں۔ مہربان خداوند، ہم ان چھوٹے پارسلوں کو تیرے پاس لاتے ہیں، شاید ان میں کسی بچے کی چھوٹی واسکٹ ہو یا چھوٹی سی قمیض ہو یا چھوٹا جوتوں کا جوڑا ہو یا چھوٹی اور چیزیں ہوں، یا شاید کوئی رومال ہو جو کسی بیمار یا مصیبت زدہ کے پاس جا رہا ہے۔ خداوند، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ تیرے کلام کے مطابق ہے، کیونکہ ہم ایمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ لوگ تیرے بندہ پالوس کے بدن سے رومال اور پٹکے چھوا کر لے جاتے تھے، کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ تیرا روح اس آدمی پر ہے، اور جن پر وہ رومال ڈالے جاتے تھے ان میں سے بدروہیں نکل جاتی تھی اور کمزوریاں اور بیماریاں انہیں چھوڑ جاتی تھی، اس لیے کہ وہ ایمان رکھتے تھے۔ اور خداوند، ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم مقدس پالوس رسول تو نہیں ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تو اب بھی وہی یسوع ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ تو ان لوگوں کے ایمان کو عزت بخش۔ اور کہا گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل خدا کی فرما برداری کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ایک بار وہ پھنس گئے۔ ان کے آگے سمندر تھا، ایک طرف پہاڑ تھے، اور فرعون کی فوج ان کی طرف بڑھ رہی تھی، اور کسی نے کہا کہ خدا نے آگ کے ستون میں سے غضبناک آنکھوں سے نیچے نگاہ ڈالی، اور سمندر نے خوف زدہ ہو کر خود کو سمٹ لیا اور اسرائیل کے لیے راستہ بنا دیا تاکہ وہ وعدہ کی سرزمین تک چلے جائیں۔ اے خداوند، جب یہ پارسل تیرے زندہ کلام کی یادگاری میں بیمار جسموں پر ڈالے جائیں تو ایک بار پھر نیچے نگاہ ڈال، بخش دے کہ یہ بیماری خوف زدہ ہو جائے، اپنے بیٹے یسوع کے خون میں سے دیکھ جس نے ہمارے کفارے کے لیے اپنی جان دی، بخش دے کہ دشمن دہشت کھا کر بھاگ جائیں تاکہ یہ لوگ وعدے میں داخل ہو سکیں، کیونکہ سب باتوں سے بڑھ کر تیری مرضی یہ ہے کہ ہم اچھی صحت میں ترقی کریں۔ باپ، یہ بخش دے، کیونکہ ہم دل میں یہ تمنا رکھتے ہوئے انہیں بھیجتے ہیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے، ہم اسے یسوع مسیح کے نام سے بھیجتے ہیں، آمین۔ شکریہ بھائی گلوور۔ جناب، آپ کا بہت شکریہ۔ اب آج رات اس بیداری مہم کا اختتامی حصہ ہے، اور میں نہیں جانتا کہ آج اسے ریڈیو پر نشر کیا جائے گا یا نہیں، لیکن میں ریڈیو پر سننے والوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سالوں کے بعد یہ اجتماع بہت بہترین رہا ہے۔ یہ ایک ٹھوس جامعہ پیار بھرا اور اتفاق رائے پر مشتمل اجتماع رہا ہے جس میں بہت عرصے بعد میں نے شمولیت کی۔ They're listening to you all over Southern California, out into the islands and on the ships. We get messages from them, and so you got a big audience, thousands and tens of thousands. شکریہ جناب، بہت اچھا، مجھے سن کر خوشی ہوئی ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ یقیناً میرے دل میں اینجلس ٹیمپل کے لیے ہمیشہ ایک گرم خانہ موجود رہا ہے، کیونکہ یہ یسوع مسیح کی پوری انجیل کے لیے کھڑا ہے، اور اب یہ بات مجھے اور زیادہ شخصی بات معلوم ہوتی ہے۔ یہ بالکل اس طرح ہے، اجتماع کے بعد ہر ایک کو اور ان کی بہترین روح کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنا میں سمجھتا تھا اس سے کہیں بڑھ کر میں آپ میں سے ایک ہوں۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کو برکت دے اور مہربانی سے شکریہ. اب مجھے کہا گیا تھا کہ آج میں کچھ دیر کے لیے آپ کو اپنی سوانح حیات سناؤں. یہ میرے لیے ایک بہت مشکل کام ہے. بہت سالوں کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ میں اس تک رسائی حاصل کروں گا. تفصیل میں جانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہوگا، لیکن اس کا کچھ حصہ میں بیان کروں گا. اور یہاں پر یہ ہے کہ میں نے بہت سی کوتاہیاں کی ہیں، بہت سے ایسے غلط کام کیے ہیں، اور میں یہ التجا کروں گا جو لوگ ریڈیو پر سن رہے ہیں یا یہاں موجود ہیں، میری یہ کوتاہیاں آپ کے لیے ٹھوکر کھلانے کا پتھر نہیں بلکہ پاؤں درنے کا پتھر ہوں اور آپ کو خداوند یسوع کے قریب لائیں. پھر آج رات شفایہ عبادت کے لیے دعائیہ کارڈ تقسیم کیے جائیں گے. اب جب ہم شفایہ عبادت کے الفاظ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو شفا دینے جا رہے ہیں. ہم صرف کسی کے لیے دعا کرنے جا رہے ہوتے ہیں. شفا خدا دیتا ہے. وہ مجھ پر نہایت ہی مہربان رہا ہے اور میری دعاؤں کا جواب دیتا ہے. یہاں کچھ عرصہ ہوا کہ میں ایک مشہور مبشر کے منتظم سے گفتگو کر رہا تھا اور پوچھا یہ مبشر بیماروں کے لیے دعا کیوں نہیں کرتا، اور مبشر کے منتظم نے میرے پروگرام کے منتظم کو جواب دیا اور کہا کیونکہ یہ مبشر الہی شفا پر ایمان رکھتا ہے، لیکن اگر وہ بیماروں پر دعا کرے گا تو اس کی عبادت میں خلل پڑ جائے گا، کیونکہ اسے بہت ساری کلیسیوں نے مل کر دعوت دے رکھی ہے اور ان میں سے کئی ایک کلیسیاں الہی شفا پر ایمان نہیں رکھتی. بس اس مبشر کے لیے میرے دل میں بہت عزت اور احترام ہے، کیونکہ وہ اپنے مقام پر ہے اور اپنا فرض درست نبھا رہا ہے. شاید وہ میں اس کی جگہ کبھی نہیں لے سکتا، اور مجھے شبہ ہے کہ وہ بھی میری جگہ نہیں لے سکتا. خدا کی بادشاہی میں ہم سب کا ایک مقام ہے. ہم سب آپس میں ملے ہوئے ہیں. نعمتیں طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ظہور بھی مختلف ہے مگر روح ایک ہی ہے. اور اب آج رات کی عبادت شروع ہو گئی. میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ حمد و ثنا 6:30 بجے شروع ہوگی، اور اب اگر آپ ریڈیو نہیں سن رہے تو پھر اسے سننے کے لیے آ جائیں، کیونکہ یہ بہت خوبصورت ہوگی جیسے ہمیشہ ہوتی ہے. اور میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو ہی یہ عبادت ختم ہوگی اس کے بعد دعائیہ کارڈ تقسیم کیے جائیں گے. جتنی جلدی یہ عبادت ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ وہاں موجود ہیں اور دعائیہ کارڈ لینا چاہتے ہیں، مجھے تھوڑی دیر پہلے اس کی تجویز دی گئی تھی، میرا بیٹا یا مسٹر مرسیئر یا مسٹر گوڈ، یہ لوگ دعائیہ کارڈ تقسیم کریں گے. اپنی نشست پر بیٹھے رہیں تاکہ لڑکے قطاروں میں سے گزر کر جتنی تیزی سے ممکن ہو دعائیہ کارڈ تقسیم کر سکیں. خواہ آپ بالکنیوں میں یا فرش پر یا جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں، صرف اپنی جگہ پر رہیں. نوجوان سمجھ جائیں گے کہ آپ دعائیہ کارڈ لینا چاہتے ہیں، اور پھر آج رات ہم بیماروں کے لیے دعا بھی کریں گے. اور اگر خداوند نے میری سوچ کو تبدیل نہ کیا تو آج رات میں اس عنوان پر بولنا چاہتا ہوں، اگر تو ہمیں باپ دکھائے تو ہم مطمئن ہو جائیں گے. اپنی زندگی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے، آج سپہر کی اس عبادت میں عبرانیوں کی کتاب 13 باب میں سے ایک متن پڑھنا چاہتا ہوں. آئیں یہاں سے شروع کرتے ہیں. میرا خیال ہے 12 آیت سے شروع کریں.
Wherefore Jesus also that he might sanctify the people with his own blood.
اس لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازے کے باہر دکھ اٹھایا. بس آؤ اس کی ذلت کو اپنے اوپر لیے ہوئے خیمہ گاہ سے باہر اس کے پاس چلیں، کیونکہ یہاں ہمارا کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں بلکہ ہم آنے والے شہر کی تلاش میں ہیں. اب یہ ایک طرح کا متن ہے، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایک سوانح حیات ہے جس کا تعلق ایک آدمی سے ہے اور ہم اسے جلال نہیں دیتے، خاص طور پر ایک ایسے آدمی کے ماضی کو جو میرے ماضی کی معنی تاریخ ہو، لیکن میں نے سوچا کہ اگر ہم کلام کا کچھ حصہ پڑھیں گے تو خدا کلام کے وسیلے برکت دے گا. اور میرا خیال ہے کہ یہاں ہمارا کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں ہے بلکہ ہم آنے والے شہر کی تلاش میں ہیں. अब मैं जानता हूँ कि आप सब लॉस एंजलस के बहुत दिल दादा हैं। आपको ऐसा करने का हक है। ये एक बड़ा और खूबसूरत शहर है। आलूदगी के बावजूद ये अब भी खूबसूरत है और इसका मौसम बेहतरीन है, लेकिन ये शहर भी कायम नहीं रह सकता। इसका भी खात्मा होना जरूर है। मैं रोम में उस जगह भी गया हूँ जहाँ बड़े बड़े शहनशाह और वो शहर हैं जिनकी तामीर को वो गैर फानी ख्याल करते थे, और उनके खंडरात को तलाश करने के लिए भी 20-20 फुट खुदाई करनी पड़ती है। मैं उस जगह भी गया हूँ जहाँ फराउनों की अजीम सल्तनतें थी, और अब उनकी हुकूमतों के मकाम तलाश करने के लिए जमीन खोदनी पड़ती है। हम सब भी इसी तरह अपने शहर और अपनी जगह के मुतालिक सोचना शुरू करें, लेकिन याद रखें, ये कायम नहीं रह सकते। जब मैं एक छोटा लड़का था तो एक बड़े मैपल के दरख्त के पास जाया करता था। हमारे इलाके में सख्त लकड़ी के दरख्तों की बौतात थी, और फिर हमारे पास ये चीनी पैदा करने वाला मैपल का दरख्त था, और हम इसे कहते थे सख्त मैपल और नरम मैपल। ये कद आवर और बहुत खूबसूरत दरख्त था, और जब मैं खेतों से घास काटकर और फसल काटने के काम से फारिग होकर आता था तो मैं पसंद करता था कि इस बड़े दरख्त के पास जाऊं और इसके नीचे बैठूं और ऊपर देखूं, और मैं इसके जसीम तने और हवा में लहराती बड़ी बड़ी शाखों को देखता था, और मैं कहता था, आप जानते हैं कि मुझे यकीन है कि ये दरख्त हजारों सालों तक यहाँ मौजूद रहेगा। ज्यादा अरसा नहीं हुआ कि मैंने इस पुराने दरख्त का एक नज़ारा देखा कि वो महज एक टहनी सी रह गया है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं है। नहीं, इस जमीन पर नजर आने वाली कोई चीज भी कायम नहीं रह सकती। इसका खात्मा होना यकीनी है। हर फानी चीज गैर फानी के आगे हार जाएगी। बस हम अपनी शाहराएं का जितनी भी अच्छी बना लें, इमारतें जितनी भी आला बना लें, आखिरकार को इन्हें खत्म होना है, क्योंकि यहाँ कोई हमेशा कायम रहने वाली चीज नहीं है, सिर्फ अनदेखी चीजों को क्याम हासिल है। मुझे वो घर याद है जिसमें हम रहते थे। ये पुराना सा गारे से लिपा हुआ लकड़ी का घर था। मैं शायद आप में से बहुतों ने गारे से लिपा हुआ घर नहीं देखा होगा, लेकिन ये सारा घर गारे से लिपा हुआ था, और बड़े बड़े शैतीर जो इस पुराने घर में थे उनके बायस मैं सोचता था कि ये घर सैकड़ों साल तक कायम रहेगा। लेकिन आप जानते हैं कि जहाँ ये घर था वहाँ आज एक रिहायशी मंसूबा बन चुका है। ये बेहद मुख्तलिफ है, हर चीज तब्दील हो रही है। लेकिन मैं अपने वालिद को देखा करता था कि वो एक पस्त कद गठे हुए जिस्म के मजबूत आदमी थे। जितने पस्त कद आदमियों को मैं जानता था उनमें वो मजबूत तरीन थे। मैं मिस्टर कुट से मिला जिनके साथ मेरे वालिद लकड़ी काटने का काम करते थे, क्योंकि वो लकड़ी काटने वाला था, और तकरीबन एक साल गुजरा। मिस्टर कुट्स मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च के डीकन हैं। उसने कहा, बिली, तुम दर हकीकत एक ताकतवर आदमी हो। और मैंने कहा, नहीं जनाब, मैं ऐसा नहीं हूँ। उसने कहा, अगर तुम अपने बाप पर जाते तो तुम वैसे ही होते। उसने कहा, मैंने उस आदमी को देखा था जिसका 140 पाउंड वजन था। वो 900 पाउंड वजनी लकड़ी को खुद ही रेड़े पर चढ़ा लेता था। वो इस तरीके से जानता था कि उसे कैसे चढ़ाना है। वो बहुत मजबूत आदमी था। मैंने देखा था कि जब वालदा उन्हें बुलाती थी तो वो रात के खाने के लिए मुंह हाथ धोने और तैयार होने की जगह पर आ जाते थे। हमारे घर के सामने सेन में एक पुराना सेब का दरख्त था, और पिछली जानिब तीन या चार दरख्त थे, और ठीक दरमियान वाले दरख्त पर एक बड़े टूटे हुए आईने का टुकड़ा लगा हुआ था जिसे कील ठोककर दरख्त के साथ लटकाया गया था। ये उसी तरह था जिसे बढ़ई लोग कोट हैंगर कहते हैं। उन्हें इस तरह मोड़ दिया गया था कि शीशे को फंसाए रखें। वहाँ एक पुरानी टीन की कंगी थी। आप में से कितनों ने कभी पुरानी टीन की कंगी देखी है, यानी पुराने तर्ज की टीन की कंगी? मैं उसे अब भी देख सकता हूँ। और फिर वहाँ मुंह धोने के लिए एक छोटा सा बंच था। ये बस एक कश्ती थी जिसके नीचे एक डलवान टांग थी, और ये दरख्त के साथ लगा हुआ था, और एक पुराना छोटा सा नलका था जिसे चलाकर हम पानी निकालते और उस दरख्त के नीचे बैठकर मुंह हाथ धोते थे। और हमारी वालदा आटे के थैलों से हमारे लिए तौलिया बनाती थी। क्या कभी किसी ने आटे के थैले का तौलिया इस्तेमाल किया है? ठीक है, मुझे यकीन है कि अब मैं खुद को घर में महसूस कर रहा हूँ। वो बड़े खुरदरे तोलिए होते थे और जब वो हम छोटे बच्चों को नहलाती थी तो वो लगता था कि हर रगड़े के साथ हमारी खाल ही उतार ले जाएगी। और मुझे आटे का वो थैला याद है, वो उनमें सजावट का पहलू पैदा करने के लिए कुछ दागे निकाल देती थी और वो जालर से बन जाते थे। कितने लोग हैं जो घास के गद्दे पर सोए हैं? ठीक है, मैं ये कहूँगा कि कितने लोग जानते हैं कि कभी भूसे का तकिया भी होता था? ठीक है भाई ग्लोर, अब मैं यकीनी तौर पर घर में महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ कि मैंने घास के गद्दे का इस्तेमाल छोड़ा है और ये हो इस पर बड़ी अच्छी और मीठी नींद आती है। और फिर मौसम सरमा में परों का बिस्तर बिछाकर हम सोते थे, आप जानते हैं, और फिर छत के ऊपर हमें तरपाट डालनी पड़ती थी क्योंकि दरवाजों से बर्फ गुजरकर अंदर आ जाती थी। और आप जानते हैं कि जहां पर पुरानी तख्तियां ऊपर को मुड़ी हों, आप जानते हैं कि उनमें से बर्फ अंदर घुस जाती है। और हो ये सब कुछ मुझे याद है। और वालिद साहब एक शेविंग ब्रश भी इस्तेमाल करते थे। मैं आपको बताऊंगा, ये मकई के बालों का बना हुआ था, ये शेविंग ब्रश मकई के बालों के साथ बना हुआ था। और मेरी वालदा के तैयार करदा साबुन को लेते जो वो बनाती थी और मकई के बालों से बने हुए ब्रश से अपने चेहरे पर लगाते और एक बड़े सीधे उस्तरे से अपनी शेप बनाते और इतवार को वो कागज के टुकड़े अपने कॉलर के गिर्द चपकाते कि शेव करते वक्त कमीज के कॉलर को जाग न लगने पाए। क्या आपने कभी ये काम देखा है? क्यों? ओ मेरे खुदाया। मुझे याद है कि वहाँ एक छोटा सा चश्मा भी था जहाँ से हम पानी पीने जाया करते थे और अपने लिए एक पुराने कद्दू के प्याले से पानी निकाला करते थे। आप में से कितनों ने कभी वो पुराना कद्दू का प्याला देखा है? ठीक है, यहाँ कैंटकी से आए हुए कितने लोग हैं? वाकई ठीक है, तो फिर मैं जरा अहले कैंटकी को देखना चाहता हूँ। ठीक है मेरे अजीजो, मैं समझता था कि यहाँ ओकाइस और अकाइस ही के लोग हैं, लेकिन नजर आ रहा है कि कैंटकी से भी लोग आए हुए हैं। ये ठीक है, आप जानते हैं कि चंद माह पहले उन्होंने कैंटकी में तेल की हड़ताल की, शायद उनमें से कुछ लोग इधर आ रहे हों।
मुझे ये भी याद है कि जब मेरे वालिद घर आते और रात के खाने के लिए हाथ मुंह धोते वक्त वो अपने उन छोटे मजबूत बाजुओं से अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा लिया करते थे और मैं कहा करता था, आप जानते हैं कि मेरे वालिद 150 साल तक जिंदा रहेंगे, बस वो मजबूत आदमी थे, लेकिन वो 52 साल की उम्र में कूच कर गए, समझे, क्योंकि यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं है। ये सच है, हम कायम नहीं रह सकते। अब आए हम में से हर एक अपनी जिंदगी का छोटा सा सफरनामा ले, मेरी तरह आप में से भी हर शख्स की जिंदगी की एक कहानी है, और थोड़ी देर के लिए याददाश्त की गली में चले जाना अच्छा होता है, क्या आप ऐसा नहीं सोचते? आइए जरा वापस चलें, आइए थोड़ी देर के लिए सब ही वापस चलते हैं, बचपन के ऐसे तजर्बात पर वापस चलते हैं। और अब ये जिंदगी की कहानी का पहला हिस्सा होगा, मैं इसका थोड़ा सा जिक्र करूंगा क्योंकि ये एक किताब में मौजूद है और वो किताब आपके पास है। मेरी पैदाइश केंटकी के पहाड़ों में एक कोहस्तानी घर में हुई। वहाँ एक कमरा था जहाँ हम रहते थे, फर्श पर कोई कालीन या यहाँ तक कि कोई लकड़ी का टुकड़ा वगैरह भी नहीं लगाया गया था। ये बिल्कुल एक नंगा फर्श था और एक दरख्त का कटा हुआ कंधा जिसकी तीन टांगे थी, ये हमारी मेज थी और तमाम छोटे ब्रहनम बच्चे इसके चौगिर्द जमा हो जाते थे। और जब तमाम छोटे छोटे भाई कोठरी से बाहर निकलकर खेल रहे होते थे तो ऐसे लगता था, आप जानते हैं, कि जैसे गिलहरियों का कोई ग्रोह मट्टी में खेल कूद मचा रहा हो। हम 9 भाई थे और एक छोटी बहन थी। इतने सारे लड़कों के दरमियान उसका वक्त बहुत मुश्किल गुजरता था। जिस तरह हम उसे तंग किया करते थे, अब उसके बरक्स हम उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। वो लड़की थी, वो हमारे साथ कहीं भी नहीं जा सकती थी क्योंकि हम उसे वापस भगा देते थे। आप समझ सकते हैं कि वो कोई मौका नहीं पा सकती थी। बस हम और तमाम, मुझे याद है कि उस मेज के पीछे सिर्फ 2 कुर्सियां थीं और वो भी टहनियों की बनी हुई थी। ये बस 2 शाखी सांगियों को मिलाकर बनाई गई थी और पैंदे को दरख्त की छाल से बुन दिया गया था। क्या किसी ने दरख्त की छाल की कुर्सी देखी है? जी हाँ, और अब भी मैं अपनी वालदा की आवाज को सुन सकता हूँ। ओ
बाद में जब हम एक दूसरी जगह मुंतकिल हो गए जहां लकड़ी का फर्श था और वालदा की गोद में बच्चे होते थे और वो उस पुरानी कुर्सी को फर्श पर घसीटती थी तो धड़ धड़ की आवाजें आती थीं। मुझे याद है कि जब वो धुलाई वगैरह का काम करने के लिए जाती थी तो कुर्सी को खींचकर दरवाजे के बीच में फंसा देती थी ताकि छोटे बच्चे घर से बाहर ना निकल सकें। और इसी तरह जब वो चश्मे से पानी लेने या ऐसे और काम करने जाती थी तो ऐसा ही करती थी ताकि छोटे बच्चे घर से बाहर ना जा सकें। और जब मैं पैदा हुआ तो उस वक्त माँ की उम्र 15 साल और बाप की उम्र 18 साल थी और मैं 9 बच्चों में पहलौठा था। और मेरे वालदेन मुझे बताते हैं कि जब मैं उस सुबह पैदा हुआ हम बहुत ही गरीब थे, बल्कि गरीबों में से भी गरीब तरीन थे। और हमारी इस छोटी कोठरी में कोई खिड़की तक ना थी, इसमें लकड़ी का एक दरवाजा ही था जो आप खोल सकते थे। मुझे शक है कि आपने ऐसी चीज कभी देखी भी नहीं होगी। लकड़ी का छोटा सा दरवाजा था जो खिड़की की जगह खुलता था। हम उसे दिन के वक्त खुला रखते थे और रात के वक्त बंद कर देते थे। हमारे पास बिजली की रोशनियां नहीं थी, हत्ता कि उन दिनों में मिट्टी का तेल भी नहीं जलाते थे, बल्कि हमारे पास वो चिराग था जिसको आप चर्बी वाला चिराग कहते हैं। अब मैं नहीं जानता कि आप चर्बी वाले चिराग से वाकिफ हैं या नहीं। वो चिराग क्या था? ठीक है, क्या आपने और क्या कभी आपने चीड़ की गांठ लेकर जलाई है? इसे आग लगाकर कभी किसी सरपोश के ऊपर रखा है? ये जलेगी और इससे थोड़ा धुआं पैदा होता था, लेकिन हमारे पास कौन सा कोई फर्नीचर था जिसे धुएं का खतरा हो? बस इस तरह कोठरी में धुआं फैल जाता था, लेकिन ये धुआं ऊपर चला जाता था क्योंकि छत काफी ऊपर थी और धुएं को खींच सकती थी। बस मैं 6 अप्रैल 1909 को पैदा हुआ था। बेशक आप जानते हैं कि अब मैं 25 साल से थोड़ा ऊपर हूँ। और बस जिस सुबह मैं पैदा हुआ था, वालिदा कहती हैं कि उन्होंने खिड़की खोली और अब हमारे पास कोई डॉक्टर ना था, महज एक दाया मौजूद थी और वो भी और वो दाया मेरी दादी माँ थी। और पर जब मेरी पैदाइश हुई और मेरे रोने की पहली आवाज निकली और मेरी माँ अपने बच्चे को देखना चाहती थी और हालांकि वो खुद भी एक बच्ची से बढ़कर कुछ नहीं थी। और जब पो फटने के वक्त तकरीबन सुबह 5 बजे उन्होंने उस खिड़की को खोला तो एक जाड़ी के ऊपर रबन परिंदा बैठा हुआ था, जैसे कि आप सब ने मेरी सवाने हयात में इसकी तस्वीर को देखा है। जहां वो रबन परिंदा बैठा हुआ था वहां वो गा रहा था। मैंने हमेशा रबन परिंदों से मोहब्बत की है। अब आप रेडियो के जरिए सुनने वाले नौजवानों, याद रखना ये मेरे परिंदे हैं, इन्हें गोली मत मारना, आप समझे? ये सब मेरे परिंदे हैं। क्या आपने कभी रबन का किस्सा सुना है कि उसका सीना कैसे लाल हो गया? मैं यहाँ थोड़ी देर रुकूंगा। कैसे उसका सीना लाल हो गया? एक दिन बादशाहों का बादशाह सलीब पर जान दे रहा था, वो दुख उठा रहा था और कोई उसके पास ना आया, कोई उसकी मदद करने ना आया। वहाँ एक बुरे रंग का परिंदा था जो सलीब में से कीलों को निकालना चाहता था। वो बार बार उड़कर सलीब की तरफ आता और कीलों को निकालने के लिए झटके देता रहा। वो इतना छोटा था कि उन्हें निकाल नहीं सकता था और उसका सीना खून से लाल हो गया था। उस वक्त से लेकर आज तक उसका सीना लाल है। लड़को, इसे गोली मत मारना, इसे छोड़ दो। वो खिड़की की एक तरफ बैठा चहचहा रहा था जैसे कि रावण परिंदे गाते हैं। और वालिद ने खिड़की को खोलने के लिए धकेला। वालदा बताती हैं कि जो ही खिड़की खोली गई, वो रोशनी जिसे आप मेरी तस्वीर में देखते हैं गर्दिश करती हुई अंदर आई और बिस्तर के ऊपर आकर ठहर गई। दादी अम्मा नहीं जानती थी कि ये क्या है। अब हमारा घराना कोई मजहबी ना था, मेरे घर वाले कैथलिक थे, मैं दोनों तरफ से आयरिश नस्ल का हूँ। मेरे वालिद कटर आयरिश ब्रैनम थे और मेरी वालदा हार्वे, फक्त उनके वालिद ने एक चेरोकी इंडियन औरत से शादी की जिससे आयरिश नस्ल के खून का सिलसिला थोड़ा सा टूटा। और मेरे वालिद और वालदा गिरजे नहीं जाया करते थे, उनकी शादी भी गिरजाघर से बाहर ही हुई थी, उनका कोई मजहब ना था और फिर इस कोहिस्तानी इलाके में कोई कैथलिक गिरजा भी नहीं था। वो इब्तदाई आबादकारों के साथ आए थे। यहाँ दो ब्रहनम खानदान आए, जिनमें से ब्रहनम लोगों की पूरी नस्ल यहाँ पैदा हुई। ये मेरे खानदान का शिजरा है। और जब दादी माँ ने खिड़की खोली, जब उन्होंने खिड़की खोली और वो रोशनी अंदर आकर ठहर गई, तो वो नहीं जानते थे कि क्या करें। वालिद ने इस मौके के लिए, वालदा बताती हैं कि एक नया लिबास खरीदा था। वो खड़े, वो अपने बाजू लिबास के अंदर किए खड़े थे, जिस तरह उन दिनों लकड़हारे और लकड़ी लादने वाले पहनते थे, और वो उस रोशनी से खौफजदा हो गए। ठीक है। और जब मैं तकरीबन 10 दिन का हुआ तो कुछ इस तरह हुआ कि मेरे घर वाले मुझे एक छोटे से बैप्टिस्ट चर्च में ले गए, जिसे अपोसम किंगडम कहते हैं। उसका पूरा नाम अपोसम किंगडम बैप्टिस्ट चर्च था, यही नाम था। वहाँ एक वक्ती मनाद था, वो पुरानी तर्ज का बैप्टिस्ट मनाद वहाँ 2 महीने के बाद आया करता था। तब वो लोग मिलकर छोटी सी इबादत करते और वो कुछ गीत गाते थे, लेकिन मनाद वहाँ कभी कभार ही चक्कर लगाने आता था। लोग उसे कद्दूओं की एक बोरी और दीगर ऐसी चीजें सालाना देते थे, जैसे कि आप जानते हैं कि जो वो उसके लिए इकट्ठी करते थे। और वो बुजुर्ग मनाद आया और मुझ छोटे बच्चे पर दुआ की। ये मेरा गिरजाघर जाने का पहला मौका था। और मेरी उम्र तकरीबन और जब मेरी उम्र 2 साल से कुछ ज्यादा हुई तो पहली रोया दिखाई दी। ठीक वो पहाड़ी इलाके में बयान करते रहे कि ये रोशनी अंदर आई थी। बस उन्होंने इसकी वजाहत करने की कोशिश की। किसी ने कहा कि वो सूरज की रोशनी होगी जो घर के अंदर आईने के जरिए आई होगी, लेकिन वहाँ कोई आईना नहीं था और सूरज अभी तक निकला नहीं था, क्योंकि ये सुबह के 5 बजे का वक्त था। और फिर उन्होंने इसका ख्याल छोड़ दिया। और जब मैं तकरीबन 3 साल के करीब हुआ, अब मुझे दयानतदारी से काम लेना होगा। यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बताना पसंद नहीं करता, और मैं चाहता हूँ कि इनको नजरअंदाज कर दूँ और बयान ना करूँ, लेकिन फिर भी सच्चाई को बयान करना चाहिए। वो खुद अपने ऊपर हो या आप लोगों के ऊपर हो, और अगर हम दयानतदारी करेंगे तो फिर ये हमेशा यकसा है। मेरे वालिद मजहबी आदमी होने से कोसों दूर थे। वो खालस पहाड़ी नौजवान थे जो हर वक्त शराब पीते थे। एक दफा वो एक लड़ाई में मुश्किल में फंस गए। पहाड़ों में कोई पार्टी हुई जहां 2 या 3 आदमी लड़ते, गोलियां चलाते और एक दूसरे को चाकू मारते हुए तकरीबन जहां बाक हो गए। मेरे वालिद इस लड़ाई के सरगोहों में से थे, क्योंकि उनका एक दोस्त लड़ाई में जख्मी हो गया और उसने दूसरे को कुर्सी मार दी। फिर मुखालिफ ने चाकू निकाल लिया और वो वालिद के दोस्त को फर्श पर गिराकर दिल में चाकू मारने वाला था, इसलिए वालिद को दोस्त का साथ देना पड़ा। ये बड़ी खतरनाक लड़ाई थी, क्योंकि वो मीलों दूर बक्सवेल में वालिद साहब के पीछे घोड़सवार अफसर भेजते रहे। बस वो आदमी उस वक्त मौत के मुँह में था। शायद उसका कोई अजीज यहाँ सुन रहा हो, मैं उसका नाम बताने जा रहा हूँ। उसका नाम विल यार्बर था। शायद वो, मेरा ख्याल है कि उसके बेटों में से कोई कैलिफोर्निया से हो। वो बहुत जसीम और बहुत ताकतवर आदमी था, जिसने हफाजती लोहे की पटड़ी मारकर अपने ही बेटे को जान से मार दिया। बस वो बड़ा ताकतवर और बुरा आदमी था। यूं उसके और मेरे वालिद के दरमियान चाकुओं की खतरनाक लड़ाई हुई और मेरे वालिद ने उस आदमी को तकरीबन मार ही डाला, इसलिए उन्हें केंटकी से भागकर दरिया पार इंडियाना आना पड़ा। और मेरे वालिद का एक भाई था जो उस वक्त लॉइसविल केंटकी में रहता था। वो वहाँ लकड़ी पर नकाशी का काम करने वाले कारखाने में दूसरे दर्जे का नगरान था, जो कि केंटकी लॉइसविल में था। बस मेरे वालिद ने अपने बड़े भाई को तलाश किया। अपने 17 बहन भाइयों में मेरे वालिद सबसे छोटे थे। जब मेरे वालिद ने अपने बड़े भाई को तलाश किया तो उसे वफात पाए हुए 1 साल हो चुका था। मेरे वालिद वापिस ना आ सके, क्योंकि कानून उनकी तलाश में था। और फिर हमें खत के जरिए उनकी खबर मिली, जिस पर कोई और नाम लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने वालदा को बता रखा था कि वो उनके मुतल्लक कैसे खबर पाएगी। मुझे एक चश्मे का वाकया याद है कि एक छोटी झोंपड़ी घर की पिछली जानब थी, और उस अरसे के दौरान जहाँ मेरी और मेरे छोटे भाई की उम्र तकरीबन 11 माह का फर्क था, और मैं अभी तक रिंग कर चलता था, मेरे हाथ में एक बड़ा सा पत्थर था और मैं उसे दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं कितनी ताकत से इस पत्थर को कीचड़ में फेंक सकता हूँ। वहाँ से चश्मा फूटता था और उसने जमीन में कीचड़ बना दिया था। मैंने एक दरख्त पर बैठे हुए एक परिंदे की आवाज सुनी जो गा रहा था। मैंने ऊपर दरख्त की जानिब देखा तो परिंदा उड़ गया, और जब यह परिंदा उड़ गया तो एक आवाज मुझसे मुखातिब हुई। अब मैं जानता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि इतनी उम्र में मैं सोचने और याद रखने के काबिल नहीं हो सकता था, लेकिन खुदावन जो मेरा मुंसिफ है, जमीन और आसमान और जो कुछ उनमें है, वो जानता है कि मैं सच बता रहा हूँ। जब वो परिंदा उड़ गया तो उस जगह से जहाँ दरख्त पर वो परिंदा बैठा था एक आवाज आई जैसे झाड़ी में से हवा काट कर गुजरती हो, और उसने कहा तू न्यू अल्बानी नामी शहर के करीब रहेगा। और मैं 3 साल की उम्र से लेकर अब तक न्यू अल्बानी इंडियाना से 3 मील दूर मुकाम पर रिहायश पजीर हूँ। मैं अंदर गया और मैंने अपनी वालदा को इस बात के मुतालिक बताया। ठीक है, मेरी वालदा ने सोचा कि शायद मैंने कोई ख्वाब देखा है या कोई चीज और देखी है। बाद में हम इंडियाना मुंतकिल हो गए, जहाँ वालिद साहब ने एक अमीर आदमी मिस्टर वाथन का काम करना शुरू कर दिया। वो शराब बनाने वाले कारखाने का मालिक था। उसकी आमदन बहुत ज्यादा थी। वो लुइसविल में करोड़पति था और बड़े अफसरों के साथ बेसबॉल खेलता था और इसी तरह के और मजीद काम करता था, और हमने उस जगह के करीब रिहायश इख्तियार कर ली। अगरचे मेरे वालिद गरीब आदमी थे तो भी शराब पिए बगैर वो नहीं रह सकते थे। बस उन्होंने विस्की बनाने की एक बट्टी बना ली, और तब इस काम से मेरे लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई, क्योंकि मैं बच्चों में सबसे बड़ा था और मुझे इस बट्टी में पानी भरना पड़ता था ताकि उसके गिर्द चक्कर ठंडे रहें, और जब उनसे विस्की बन रही होती थी। और फिर मेरे वालिद ने इसकी फरोख्त शुरू कर दी, और फिर उन्होंने 2 और 3 बट्टियाँ और बना ली। और अब ये ऐसा हिस्सा है जो मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन ये सच्चाई है। और मुझे वो एक दिन याद है जब मैं रोता हुआ गोदाम से घर वापस आया, क्योंकि उस जगह के अकब में एक तालाब था, उस जगह जहां वो बर्फ काटा करते थे। अब मैं बहुतों को याद होगा कि लोग किस तरह बर्फ काटा करते थे और बरादे में महफूज किया करते थे। बस इसी तरीके से मिस्टर वाथन गांव में बर्फ महफूज किया करते थे, और मेरे वालिद उनके प्राइवेट ड्राइवर थे। और जब ये तालाब मछलियों से भर जाता था, और जब वो बर्फ काट काट कर लाते और उसे लकड़ी के बरादे में रखते थे, और गर्मियों में जब ये बर्फ पिघल कर नीचे जाती थी तो मेरा ख्याल है कि ये इतना साफ दिखाई देने लगता था जैसे बर्फ की एक झील हो। और वो इसे पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि पानी ठंडा रखने के लिए उसे बाल्टियों और अपने दूध वगैरह के गिर्द रखने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। एक दिन मैं इस नलके से पानी भरने के लिए जा रहा था जो कि शहर के एक ब्लॉक के फासले पर था, और मैं उसको कोस रहा था जिसके पास ये नहीं था, क्योंकि मैं स्कूल से आया था और तमाम लड़के मछलियाँ पकड़ने तालाब पर चले गए थे। मुझे मछलियाँ पकड़ने का शौक था, मेरे सिवा सभी लड़के मछली के शिकार पर चले गए थे, लेकिन मुझे इस भट्टी के लिए पानी भरना पड़ रहा था। बिलाशुबा मेरे अजीजों, मुझे इस पर खामोशी रहना था, इसकी ममानत थी, और मैं मेरे लिए यह बड़ी मुसीबत थी। मुझे याद है कि मैं उभरे हुए पंजे के साथ चल रहा था। मैंने पाँव के पंजे को मट्टी से बचाने के लिए नीचे मकई का भुट्टा बांधा हुआ था। आपने कभी ऐसा देखा है? मकई का भुट्टा पंजे के नीचे रखकर इर्द गिर्द एक डोरी लपेट ली। ये पाँव के पंजे को यूं ऊपर उठा देता है, आप जानते हैं, जैसे किसी कछुए ने अपना सर उठा रखा हो। जब मैंने पंजे के नीचे ये भुट्टा बांध रखा था तो मैं जिधर भी जाता आप मेरा खोज लगा सकते थे, क्योंकि मैं जहाँ भी ये पाँव रखूँगा आप उसे जान लेंगे। मेरे पास पहनने के लिए जूते नहीं थे। बाज़ औक़ात हमें मौसमी सरमा तक जूते पहनना नसीब नहीं होते थे। अगर हमें मिलते ही थे तो ये किसी और ने हमें दिए होते थे, और हमारे पास कपड़े भी वही होते थे जो किसी ने खैरात के तौर पर दिए होते थे। और मैं इस दरख्त के नीचे रुक गया और वहाँ बैठकर रोने लगा। ये सितंबर का महीना था, इसलिए कि मैं मछलियाँ पकड़ने जाना चाहता था, लेकिन मुझे एक छोटी सी बाल्टी से बहुत से टब भरने थे। बाल्टी निसफ गैलन जितनी ऊँची थी, इसलिए मैं महज 7 साल का बच्चा था। मैं 2 बाल्टियां भरकर लाता और बड़े से टब में अंडेल देता, फिर वापस जाता और उन्हें नलके से भरकर लाता, और हमारे पास यही पानी होता था। और जो आदमी वालिद के साथ घर में होते थे वो पानी के उन तमाम टबों को तैयार करने वाली विस्की के साथ ही इस्तेमाल कर देते थे। मैं रो रहा था और अचानक एक बगोले सा शोर सुनाई दिया, और ये कुछ इस तरह से था। अब मुझे यकीन है कि आवाज बुलंद ना थी, बस की आवाज थी। ठीक है, मैंने इर्द गिर्द देखा, मुकम्मल खौफनाक सन्नाटा था। और आप जानते हैं वो क्या था? वो एक छोटा सा भगोला था। मुझे यकीन है कि आप इसे गिर्दबाद ही कहते हैं। मौसमी खजा में लोग मकई के खेतों में से पत्ते वगैरह उठाते हैं, और आप जानते हैं कि खजा में पत्ते मुड़ना शुरू कर देते हैं। मैं सफेद चनार के एक बड़े दरख्त के नीचे खड़ा था जो हमारे घर और गोदाम के दरमियानी फासले पर था, और मैंने इस आवाज को सुना। मैंने इर्द गिर्द देखा, वहाँ इतनी खामोशी थी कि जितनी इस कमरे में है, यहाँ तक कि कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा था। मैंने अपने दिल में कहा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ठीक है, और तब मैंने सोचा कि इसे जरूर ही यहाँ से दूर होना चाहिए। मैं एक महज बच्चा था और ये आवाज बुलंद से बुलंद तरीन होती जा रही थी। मैं आराम कर रहा था और उठा, और मैंने अपनी छोटी बाल्टियाँ उठा ली और दो तीन मरतबा सिसकियाँ ली और फिर रास्ते पर चल दिया। मैं उस बड़े दरख्त की शाखों के नीचे से चंद फुट की दूरी पर था, और हो मेरे खुदाया कि गिर्दबाद की आवाज दोबारा सुनाई दी। मैं देखने के लिए मुड़ा और दरख्त के निस बुलंदी पर एक बगोला मौजूद था, और वो दरख्तों के पत्तों के गिर्दा गिर्द गर्दिश कर रहा था। ठीक है, तो मैंने ख्याल किया कि साल के इस हिस्से में ये वाकया कोई गैर मामूली नहीं है, इसलिए खिजां के मौसम में अक्सर ऐसे बगोले आते हैं थोड़ा, जिन्हें हम गिर्दबाद कहते हैं, और वो बगोले गिर्द गुबार को उड़ाते हैं। आपने बियाबान में इसी तरह के बगोले देखे होंगे, बिल्कुल यही बगोले मैंने देखा, लेकिन वो वहाँ से दूर ना गया। आम तौर पर कोई बगोला एक लम्हाती झोंके की तरह आता है और फिर चला जाता है, लेकिन ये बगोला दो मिनट से भी ज्यादा देर रुका रहा। ठीक है, फिर इस तरह मैं दोबारा अपने रास्ते पर हो लिया, और मैं उस बगोले को देखने के लिए एक बार मुड़ा, और तब वो गुजर चुका था। तो फिर एक इंसानी आवाज आई, वो आवाज ऐसी ही काबले समात थी जैसी इस वक्त मेरी आवाज है। उसने कहा, कभी शराब या सिगरेट ना पीना और अपने बदन को किसी तरह नापाक ना होने देना, क्योंकि जब तू बड़ा होगा तुझसे एक काम लिया जाएगा। अगरचे इस बात से मैं मौत की हद तक खौफजदा हो गया था, आप तस्वीर कर सकते हैं कि एक छोटे से बच्चे ने किस तरह महसूस किया होगा। मैंने बाल्टियां वहीं फेंक दी और बुलंद आवाज से रोता हुआ पूरी रफ्तार से जितना कि मैं दौड़ सकता था घर की तरफ दौड़ गया। उस इलाके में जहरीले अफवाही और सांप पाए जाते थे, और वो बहुत जहरीले होते थे, और वालदा ने सोचा कि बाग से गुजरते हुए मेरा पांव किसी जहरीले सांप पर आ गया होगा, और वो मुझे पकड़ने लगी, और मैं उछलकर माँ से लिपट गया और रोते हुए उससे लिपटने और उसे चूमने लगा। और माँ ने पूछा, क्या बात है, क्या तुम्हें किसी सांप ने डस लिया है? उसने हर तरफ से मुझे देखा। मैंने कहा, नहीं माँ, उस दरख्त पर कोई आदमी है। माँ ने कहा, ओ बिली बिली जाने दो। और फिर माँ ने कहा, क्या तुम वहाँ सो गए थे? मैंने कहा, नहीं माँ, दरख्त पर कोई आदमी था, और उसने मुझसे कहा कि तू शराब और सिगरेट ना पीना और ना ही विस्की और ना ही ऐसी दूसरी चीजें। और फिर मैं किसी वक्त एक खाली शराब की बटी में पानी भर रहा था, और उसने कहा, तू कभी शराब ना पीना और ना ही अपने बदन को किसी तरह से नापाक होने देना। और आप जानते हैं, जैसे कि मर्दों और औरतों के दरमियान हरामकारी होती है, और मैंने हमेशा कोशिश की और कभी एक मर्तबा भी ऐसा गुनाह नहीं किया। खुदावन ने मुझे ऐसी बातों से महफूज रखा, और जो जो मैं कहानी बयान करता जाऊंगा आप जान जाएंगे। बस उसने कहा, ना कभी शराब पीना और ना ही सिगरेट और ना कभी अपने बदन को नपाक करना, क्योंकि जब तू बड़ा होगा तो एक खास काम तुझे करना होगा। ठीक है, बस मैंने ये बातें माँ को बताई, और वो मुझ पर हंस दी, जबकि मुझ पर हिस्टेरिया की सी कैफियत तारी थी। वालदा डॉक्टर को बुला लाई, और डॉक्टर ने कहा, ठीक है, ये सिर्फ खौफजदा है और कुछ नहीं। और माँ ने मुझे बिस्तर पर लटा दिया, और उस दिन से लेकर फिर कभी मैं उस दरख्त के पास से नहीं गुजरा, इसलिए कि मैं खौफजदा हो गया था, और मैं बाग की दूसरी तरफ से गुजर जाता था, क्योंकि मैं समझता था कि उस दरख्त पर कोई आदमी है जो बड़ी गंभीर आवाज में मेरे साथ मुखातिब हुआ था। और फिर तकरीबन इसके एक माह बाद मैं अपने छोटे भाइयों के साथ बैरूनी सेन में संगमरमर की कंकरियों का खेल खेल रहा था, और अचानक मुझे अपने ऊपर एक अजीब सी कैफियत महसूस होने लगी। मैंने खेल बंद कर दिया और एक दरख्त के साथ लगकर बैठ गया, और उस वक्त हम दरियाए ओहायो के एन किनारे पर थे, और मैंने जेफरसन विल की तरफ देखा, और मैंने एक पुल को मेहराब की शक्ल में बुलंद होते और दरिया के पार तक जाते देखा, और मैंने 16 आदमी देखे। मैंने उन्हें गिना, मैंने उन आदमियों को वहाँ पुल से गिरते और अपनी जान से हाथ धोते देखा। मैं तेजी से दौड़ता हुआ अंदर गया और माँ को बताया, लेकिन उन्होंने ख्याल किया कि मैं सो गया था, लेकिन उन्होंने इस बात को अपने जहन में रखा, और इसके 22 साल बाद उसी मकाम पर पुल बनाया गया जिससे आप अक्सर गुजरते हैं, और ठीक उसी मकाम से इस पुल को गुजारा गया, और इस पुल की तामीर के दौरान 16 आदमी अपनी जिंदगियों से महरूम हो गए। ये कामिल सच्चाई होने में कभी भी नाकाम नहीं हुआ। जैसे इस वक्त आप इस समात खाना में देखते हैं, ये हमेशा ऐसा ही है। अब उन्होंने सोचा कि मैं डर गया था, जैसे कि ये तो ठीक बात है कि मैं एक डरपोक आदमी हूँ। और कभी आप गौर करें तो रूहानियत की तरफ माइल लोग डरपोक ही होते हैं। नबियों और शायरों पर निगाह करें, विलियम कॉपर को देखें, जिसने ये मशहूर गीत लिखा था, एक लहू से भरा हुआ चश्मा है जो इमैनुअल की रगों से बहता है। क्या आपने कभी, आप इस गीत से वाकिफ हैं? कुछ ज्यादा वक्त नहीं हुआ कि मैंने उसकी कब्र को देखा था। भाई जूलियस, मेरा यकीन है, मैं नहीं जानता, नहीं, हाँ, ये दुरुस्त है। ये भाई हमारे साथ उसकी कब्र पर मौजूद था, और जब उसने ये गीत लिख दिया तो रूह की तहरीक ने उसे छोड़ दिया, और उसने खुदकुशी करने के लिए कोई दरिया तलाश करने की कोशिश की, समझे, रूह उसे छोड़ चुकी थी। और मुसन्निफ और शायरों जैसे लोग, और या नहीं, मेरा मतलब है नबियों जैसे लोग, एलिया को देखें, जब वो पहाड़ पर खड़ा था तो उसने आसमान पर से आग को बुलाया और फिर बारिश को बुलाया, लेकिन जब रूह ने उसे छोड़ दिया तो वो एक औरत से डरकर भाग गया, और 40 रोज बाद खुदा ने उसे तलाश किया और वो एक गार के अंदर मौजूद था। यूना पर निगाह करें, जिस पर खुदावंत का इतना मसा था कि वो बड़े शहर नीनवा में जाकर मुनादी करे, जो रकबे में सेंट लुइस जितना बड़ा शहर था, और उस शहर के लोगों ने टाट ओढ़कर तौबा की। और फिर जब रूह ने उसे छोड़ दिया तो फिर उसके साथ क्या हुआ? और देखते हैं कि वो एक पहाड़ पर चढ़ गया क्योंकि रूह उसे छोड़ चुकी थी और खुदा से अपनी मौत की दुआ कर रहा था। और आप देख सकते हैं कि ये रूह की तहरीक होती है, और जब ये ऐसी बातें वकू पजीर होती हैं तो फिर इससे आपको कुछ होता है। अब मुझे अपना लड़कपन भी याद है, मैं अब जवान हो गया था, मैं इस दौर को जल्दी से मुख्तसर करना चाहता हूँ। जब मैं जवानी की उम्र को पहुँचा तो मेरे जहन में भी दूसरे लड़कों की तरह तसव्वुरात थे। जब मैं स्कूल जाता तो मुझे वो छोटी लड़कियाँ नजर आती थी। आप जानते हैं कि मैं बड़ा शर्मीला था, आप सब इस बात से वाकिफ हैं, और मैंने भी तमाम लड़कों की तरह आखिरकार एक लड़की से दोस्ती कर ली। मेरा अंदाजा है कि उसकी उम्र तकरीबन 15 साल थी, और इस तरह वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। वो मेरे अजीजो, उसकी आंखें कबूतरी जैसी, दांत मोतियों जैसे, और गर्दन किसी राज हंस की थी, और वो दर हकीकत बहुत खूबसूरत थी। और एक और छोटा लड़का और मैं, हम दोनों हम ख्याल थे, और वो अपने वालिद की पुरानी मॉडल की T4 गाड़ी ले आया, और हम अपनी अपनी दोस्तों को लेकर सैर के लिए रवाना हुए। हम उन्हें सैर कराने के लिए दूसरे जिले में ले गए। हमारे पास इतने पैसे थे कि हमने 2 गैलन पेट्रोल खरीद लिया। उसे चलाने के लिए हमें उसके पिछले पहिए को उठाना पड़ता था। आप जानते हैं कि उसे उठाकर चलाना, मैं नहीं जानता कि आपको कभी इस तरह की गाड़ी चलाने का तरीका हो, लेकिन हम बहुत अच्छे जा रहे थे, और बस मेरी जेब में कुछ सिक्के थे, और हम एक छोटी सी जगह पर रुक गए, और तब एक सिक्के में एक सैंडविच खरीद सकते थे, और इस तरह हो, उस वक्त मैं अमीर आदमी था क्योंकि मैंने 4 सैंडविच खरीद लिए थे, समझे। फिर हमने सैंडविच खाए और कोक की बोतलें पी। जब मैंने बोतलें वापस लेना शुरू की और मैं हैरत ज्यादा था, जब मैं बोतलें वापस करके आया, उस दौर में औरत ने अपने बाइज्जत मकाम से गिरना शुरू ही किया था, तो मेरी छोटी फाख्ता सिगरेट पी रही थी। ठीक है, सिगरेट नोश औरत के मुतालिक मेरा हमेशा से एक ही नजरिया है, और उस वक्त से लेकर मैंने इसे कभी भी तब्दील नहीं किया, और ये सच है, ये घटिया तरीन काम है जो औरत कर सकती है, और ये एन सच है। और मैंने सोचा, मैं अब सिगरेट बनाने वाली कंपनी इस बात पर मेरे पीछे पड़ सकती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि परवरिश रोकने के लिए ये अबलीस का हथियार है। इस कौम ने ये सबसे बड़ा कातल और तबाहकार दुश्मन हासिल किया है, लेकिन मैं अपने बेटे को सिगरेट नोश देखने की बजाय मदहोश शराबी देखना पसंद करूंगा, और ये बात सच है, बल्कि मैं अपनी बीवी को शराब के नशे के बाइस फर्श पर पड़े देकर बर्दाश्त कर लूंगा बनिस्बत सिगरेट नोशी के। ये ऐसे है जैसे कि अब खुदा का रूह मुझ में है, और अगर वो खुदा का रूह है तो जैसे कि आप सवाल कर सकते हैं, तो आप जो सिगरेट पीते हैं आपके लिए उसे हासिल करने का मौका कलील है, क्योंकि वो हर वक्त मौजूद है। आप प्लेटफॉर्म पर अक्सर देखते हैं कि वो किस तरह इस पर लोगों को मुजरिम ठहराता है। ये खौफनाक चीज है, इससे दूर रहें। ख्वातीन, अगर आप इस जुर्म में मुब्तला हैं, तो बराए मेहरबानी मसीह के नाम की खातिर इससे छुटकारा हासिल करें। ये आपके अंदर तोड़ फोड़ करता है, ये आपको मार डालेगा, ये सरतान के लदे हुए ट्रक हैं। डॉक्टर आपको इसके मुतालिक खबरदार करने की कोशिश करते हैं, और फिर वो इसे आपके हाथों कैसे फरोख्त कर सकते हैं। अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाकर कहें, खरीदें, मैं 50 सेंट का कैंसर खरीदना चाहता हूँ, کس لیے؟ تو وہ لوگ سٹور کا دروازہ بند کر لیں گے. لیکن جب آپ 50 سینٹ کے سگریٹ خریدتے ہیں تو آپ کینسر خریدتے ہیں. ڈاکٹر یہی کہتے ہیں, ہو اے دولت کی دیوانی قوم, یہ بہت بری بات ہے, یہ ایک قاتل ہے, یہ ثابت ہو چکا ہے. خیر, جب میں نے اس خوبصورت لڑکی کے ہاتھ میں سگریٹ دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ گویا میں قتل کر دیا گیا ہوں, کیونکہ میں اس لڑکی سے حقیقی محبت کرتا تھا. اور میں نے سوچا, خیر اچھا, اب آپ جانتے ہیں کہ لوگ مجھے عورتوں سے نفرت کرنے والا کہتے ہیں, کیونکہ میں ہمیشہ ایسی عورتوں کے خلاف ہی رہا ہوں. لیکن میں آپ بہنوں کے خلاف نہیں ہوں, میں صرف ان طور طریقوں کے خلاف ہوں جن پر جدید عورتیں عمل کرتی ہیں. یہ سچ بات ہے, نیک سیرت عورتوں کے ساتھ چلنا اچھی بات ہے. میں یاد کر سکتا ہوں جب میرے والد کی بٹی کام کر رہی ہوتی تھی اور میں وہاں پانی بھرنے اور دوسری چیزوں کے لیے جاتا تھا, تو میں 17-18 سالہ نوجوان لڑکیوں کو اتنی عمر کے آدمیوں کے ساتھ نشے میں دھت دیکھتا تھا جتنی عمر اس وقت میری ہے. انہیں سیاہ کافی پلا کر ہوش میں لایا جاتا تھا تاکہ گھر جائیں اور اپنے شوہروں کے لیے کھانا تیار کریں. ہو تب میں کچھ اس طرح کہا کرتا تھا, میں اپنا اظہار خیال یوں بیان کرتا تھا کہ یہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ ایک صاف ستھری گولی انہیں ہلاک کرنے کے لیے استعمال کی جائے. یہ سچ ہے اور میں ایسی عورتوں سے نفرت کرتا ہوں. یہ سچ ہے اور میں ابھی تک کسی ایسی تحریک کا متلاشی ہوں جو مجھے یہ سوچنے سے باز رکھ سکے. مگر پس اب ایک نیک عورت ایک مرد کے تاج کا قیمتی موتی ہے, اس کا احترام کرنا چاہیے. میری ماں بھی ایک عورت ہے اور میری بیوی بھی ایک عورت ہے اور وہ بہت اچھی ہیں, اور میں ہزاروں مسیحی بہنوں کو جانتا ہوں اور میں ان کا از حد احترام کرتا ہوں. لیکن اگر عورتیں اپنے اس مقام کا احترام کریں جس پر خدا نے انہیں پیدا کیا ہے, یعنی مامتا اور حقیقی ملکہ, تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے. نجات کے بعد کسی مرد کو خدا جو سب سے اچھی چیز دے سکتا ہے تو وہ ایک بیوی ہے. بیوی سب سے اچھی چیز ہے, بشرطے کہ وہ ایک اچھی بیوی ہو. لیکن اگر وہ ایسی نہیں ہے تو سلیمان نے کہا, نیک عورت اپنے شوہر کے لیے تاج ہے, لیکن ایک ندامت لانے والی اس کی ہڈیوں میں بوسیدگی کی مانند ہے. یہ سچ ہے, کیونکہ جو بات سب سے بدترین ہو سکتی ہے یہی ہے. اس لیے ایک نیک عورت, اس لیے اگر میرے بھائی, اگر آپ کو ایک نیک بیوی ملی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اسے عزت کا بلند ترین مقام دیں. یہ بات سچ ہے, آپ کو اس کا احترام کرنا چاہیے, یعنی ایک حقیقی عورت کا. اور اے بچوں, اگر آپ کو ایک حقیقی ماں ملی ہے جو گھر میں رہتی ہے اور آپ کی دیکھ بھال کرتی ہے, آپ کے کپڑے صاف رکھتی ہے, آپ کو اسکول بھیجتی ہے, آپ کو یسوع مسیح کے متعلق سکھاتی ہے, تو آپ کو دل و جان سے ایسی پیاری ماں کی عزت کرنی چاہیے. آپ کو اس عورت کا احترام کرنا چاہیے. جی ہاں جناب, اس لیے کہ وہ ایک حقیقی ماں ہے. وہ کینٹکی کے پہاڑی علاقوں کی جہالت کی باتیں کرتے ہیں, آپ یہاں اس زمن میں بہت سے سنتے ہیں. ان بوڑھی ماؤں میں سے کچھ ہالی ووڈ میں آ کر آپ جدید زمانے کی ماؤں کو سکھاتی ہیں کہ بچوں کی پرورش کیسے کرنی چاہیے. اگر ان میں سے کسی کی بیٹی رات گئے گھر آئے جس کے بال الجھے ہوئے ہوں اور لبوں پر, آپ اس کو کیا کہتے ہیں, اور لبوں پر سرخی اور چہرے پر بناؤ سنگار جیسی چیزیں لگی ہوں اور لباس ایک طرف کھینچا ہوا ہو اور اس نے ساری رات باہر گزاری ہو اور شراب کے نشے میں ہو, تو میرے بھائی, وہ ماں درخت سے چھڑی توڑ کر اس کی ایسی پٹائی کرے گی کہ وہ دوبارہ کبھی باہر جانے کا نام نہیں لے گی. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایسی ہی بات کسی قدر اگر آپ کے اندر آ جائے تو ہالی ووڈ بہتر ہو جائے اور ایک بہتر قوم ہو جائے. یہ درست بات ہے, یہ سچائی ہے. کچھ نیا سننے کی کوشش کرنا یہ ابلیس کی ایک چال ہے. اب جب میں نے اس چھوٹی لڑکی کو سگریٹ پیتے دیکھا تو میرا دل ٹوٹ گیا. میں نے دل میں سوچا, یہ بیچاری لڑکی. اور اس لڑکی نے کہا, او بلی, کیا تم سگریٹ نہیں لوگے؟ میں نے کہا, نہیں محترمہ, میں نے کہا میں سگریٹ نہیں پیتا. اس نے کہا, ابھی تم کہو گے کہ تم رقص بھی نہیں کرتے. وہ رقص کرنا چاہتے تھے اور میں ایسا نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے بتایا کہ وہاں رقص ہونے والا تھا جسے لوگ سکا مور گارڈنز کہتے ہیں, اور میں نے کہا, نہیں, میں ناچ نہیں سکتا. اس لڑکی نے کہا, اب تم رقص نہیں کرتے, تم سگریٹ نہیں پیتے اور نہ ہی تم شراب پیتے ہو, تو تم تفریح کیسے کرتے ہو؟ میں نے کہا, ٹھیک ہے, لیکن میں ماہی گیری کرنا پسند کرتا ہوں. اسے ان سے دلچسپی نہیں تھی. بس اس نے کہا, یہ سگریٹ لو. میں نے کہا, نہیں محترمہ, شکریہ, میں سگریٹ نہیں پیتا. میں تختے پر بیٹھا ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا پرانی فورڈ گاڑیوں میں ایک تختہ ہوتا تھا. اس طرح میں اور وہ لڑکی پچھلی سیٹ پر اس تختے پر بیٹھے ہوئے تھے. اور اس نے کہا, تو تمہارا مطلب ہے تم سگریٹ نہیں پیو گے؟ اور اس نے پھر کہا, تو پھر ہم لڑکیاں تم سے زیادہ طاقت رکھتی ہیں. میں نے کہا, نہیں محترمہ, میں نہیں سمجھتا کہ مجھے یہ کرنا ہوگا. اس نے کہا, اس لیے کہ تم بڑے زنانہ ہو. او میرے خدایا, मैं तो ताकतवर जवान बनना चाहता था, इसलिए मैं यकीनन जनाना नहीं कलवाना चाहता था। देखें, मेरी जिंदगी का नजरिया ये था कि मैं इनाम याफ्ता लड़का बनूं। इसलिए मैंने कहा, तुम क्या जनाना कहती हो? मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बस मैंने कहा, लाओ मुझे दो। मैंने हाथ बढ़ाया और कहा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं जनाना नहीं हूँ। मैंने सिगरेट लिया और माचिस की तीली जलाने लगा। अब मैं जानता हूँ कि मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ कि आप क्या ख्याल करेंगे। मैं सिर्फ सच्चाई बताने का जिम्मेदार हूँ। जब मैंने उस सिगरेट को पकड़ लिया तो मैं उसे पीने का पुख्ता इरादा रखता था जैसे इस बाइबल को उठाने का। देखें, और मैंने फौरन ऐसी आवाज सुनी। फिर मैंने कोशिश की सिगरेट पीऊं, लेकिन मैं उसे अपने मुंह तक ना ला सका और मैंने रोना शुरू कर दिया और मैंने सिगरेट को नीचे फेंक दिया और सब लड़के लड़कियां मुझ पर हंसने लगे और मैं घर की तरफ भाग गया और बाहर खेत में बैठकर रोता रहा। और ये खौफनाक जिंदगी थी। मुझे याद है कि एक दिन मेरे वालिद लड़कों के हमरा दरिया पर गए और मैं और मेरा भाई हम एक कश्ती में सवार होकर दरिया में फिरते और विस्की भरने के लिए उसमें से बोतलें तलाश कर रहे थे। हमने कोई दर्जन भर बोतलें दरिया में से निकाल ली थी। वालिद मेरे साथ थे और उनके पास छोटी चिट्टी, मुझे यकीन है कि वो 36 लीटर की बोतलें थी। वहाँ एक गिरा हुआ दरख्त था और वालिद के साथ एक शख्स था जिसका नाम मिस्टर डॉन बुश था और मैं उसके पास बड़ी अच्छी कश्ती थी और मैं उसका साथी बनना चाहता था क्योंकि मैं उसकी कश्ती इस्तेमाल करना चाहता था। उसकी पतवार बड़ी अच्छी थी और मेरी कश्ती की पतवार ही नहीं थी। हम उसे तख्तों की मदद से चलाते थे और अगर वो मुझे अपनी कश्ती इस्तेमाल करने देता, बस वो वेल्डिंग का काम करता था और उसने वालिद साहब के लिए बट्टियां बनाई थी। बस वो दोनों दरख्त पर टांगे इधर उधर रखकर बैठ गए और मेरे वालिद ने पिछली जेब में से हाथ डालकर विस्की की एक चपटी बोतल निकाली, उसे उसके हवाले किया और उसने एक घूंट लगाकर बोतल वालिद साहब को वापस कर दी और वालिद साहब ने भी उसमें से एक घूंट लिया और दरख्त के पहलू से निकली हुई एक शाख के साथ लटका दी। और मिस्टर ड्रोन बुश ने उसे उठा लिया और कहा, बिली तुम भी लो। मैंने कहा, शुक्रिया जनाब, मैं शराब नहीं पीता। उसने कहा, एक ब्रहनम होकर तुम शराब नहीं पीते हो? तकरीबन सभी ठोकरों में मर गए। और उसने फिर कहा, और तुम एक ब्रहनम होकर शराब नहीं पीते हो? मैंने कहा, नहीं जनाब, मैं शराब नहीं पीता। नहीं, ये मैं नहीं पीता। वालिद ने कहा, ये मेरे घर में एक जनाना पैदा हो गया है। मेरा बाप मुझे जनाना कह रहा था। मैंने कहा, ये बोतल मुझे दो। और मैंने बोतल का ढकना खोला और विस्की पीने का इरादा किया और जो ही मैंने बोतल को ऊपर लाना शुरू किया तो एक आवाज आई। मैंने बोतल को फौरन जमीन पर रख दिया और पूरी रफ्तार से मैदान की तरफ भाग गया और रोता रहा। कोई चीज ऐसी थी जो मुझे ऐसा नहीं करने देती थी, समझे? मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अच्छा था क्योंकि मैंने तो उसे पीने का इरादा कर लिया था, लेकिन ये खुदा का फजल था, बल्कि ये खुदा का अजीम फजल था जिसने मुझे इन कामों से बाज रखा। मैं खुद तो उन कामों को करना चाहता था लेकिन खुदा ने मुझे ऐसा करने ना दिया। बाद में जब मैं तकरीबन 22 साल का हो गया तो मुझे एक प्यारी सी लड़की मिल गई। वो गिरजाघर जाने वाली लड़की थी और जर्मन लूथरन गिरजाघर में जाती थी। उसका नाम बरम बेक था, BRUMBACH, जो बरम बाओ नाम से निकला है। और वो बहुत अच्छी लड़की थी। वो सिगरेट या शराब नहीं पीती थी और ना ही नाच रंग में हिस्सा लेती थी। वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसके साथ कुछ अरसा मुलाकात रही और तब मैं तकरीबन 22 साल का था और मैंने काफी रकम जमा कर ली थी और एक पुरानी फोर्ड गाड़ी खरीद ली थी और फिर हम मिलकर तफरी के लिए जाते थे। और बस उस वक्त तक कोई करीबी लूथरन गिरजाघर ना था। वो वहाँ हार्वर्ड पार्क से आते थे और वो वहाँ एक खादम था, डॉक्टर रॉय डेविस, जिन्होंने मिशनरी बैप्टिस्ट चर्च के लिए मेरी मखसूसियत की थी। बहन अफशाही ने अपने शोर को मेरे पास भेजा और उसने डॉक्टर डेविस के मुतालिक मेरे साथ गुफ्तगू की और उस वक्त वो फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च में मुनादी करता था या के मुझे यकीन नहीं कि ये फर्स्ट मिशनरी बैप्टिस्ट चर्च था जो कि जेफरसन व्हील में था। उस वक्त वो वहाँ मुनादी करता था और हम रात को गिरजाघर जाते थे। इस तरह हम दोनों वापस आ जाते। मैंने अभी तक कलीसिया में शमूलियत इख्तियार नहीं की थी लेकिन मैं उस लड़की के साथ गिरजाघर चला जाता था क्योंकि मेरा असल मकसद उस लड़की के साथ रहना था। मुझे अपनी पूरी दयानतदारी से बयान करना चाहिए। बस उसके साथ जाते हुए एक दिन वो लड़की बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक रखती थी और मैंने सोचना शुरू कर दिया कि तुम जानते हो तुम जानते हो कि तुम्हें इस लड़की का वक्त जाया नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की है और मैं गरीब हूँ और मैं, मेरे वालिद की सेहत भी गिर चुकी थी और मैं और इस तरह इस लड़की की जिंदगी गुजारने के लिए मेरे पास रोजी कमाने का कोई जरिया ना था, जो एक उम्दा घर में रहने की आदी थी और जिनके फर्श पर कालीन बिछी हुई थी। मुझे याद है जब मैंने पहली मर्तबा कालीन देखा, मैं नहीं जानता था कि ये क्या चीज थी। मैं उसके बाहर बाहर से गुजरा, मेरा ख्याल था कि ये मेरी जिंदगी की देखी हुई खूबसूरत तरीन चीज थी। उन्होंने इतनी खूबसूरत चीज फर्श पर क्यों डाल रखी है? ये पहला कालीन था जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा था, ये उन चीजों में से एक थी। मेरा ख्याल है कि वो उसे कालीन ही कहते हैं, शायद मुझसे इसमें गलती हो रही हो। ये कुछ इस तरह से बना हुआ था जैसे धागे की बत्तियां या कुछ इस तरह से बाहम बुनी हुई हों, जिनको फर्श पर डाला जाता है, खूबसूरत सब्ज और सुर्ख रंग की, और आप जानते हैं कि उनके दरमियान बड़े बड़े फूल बनाए जाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत चीज थी। मुझे याद है कि मैंने अपने जहन में फैसला कर लिया था कि मैं उसे कहूंगा कि मेरे साथ शादी कर लो, या फिर मैं उससे दूर चला जाऊंगा, ताकि कोई ऐसा आदमी उससे शादी करे जो उसके लिए अच्छा साबित हो और उसके लिए कमा सके और उसके साथ अच्छा सलूक कर सके। मैं भी उसके साथ अच्छा सलूक करना चाहता था, लेकिन मेरी आमदन 20 सेंट फी घंटा थी, बस मैं उसके लिए इतना ज्यादा नहीं कमा सकता था। और मैं, हमारा घराना बहुत बड़ा था, वालिद की सेहत गिर चुकी थी और मुझे उन सब की कफालत करनी थी, इसलिए मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल वक्त था। बस मैंने सोचा, ठीक है, अब मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ कि उसे बता दूँ कि मैं तुम्हारा सहारा नहीं बन सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी खुशहाल जिंदगी को खराब करने के लिए तुम्हारे मुतल्लिक बहुत सोचता रहा हूँ और बहुत अरसा तुम्हें बेवकूफ बनाता रहा हूँ। और फिर मैंने सोचा, अगर कोई और शख्स उसे सहारा दे और उससे शादी कर ले और उसे प्यारा सा घर दे, और अगर मैं उसे हासिल ना कर सकूं, तो मैं सिर्फ इतना जानने की कोशिश करूंगा कि वो खुश जिंदगी गुजार रही है। और फिर मैंने सोचा, लेकिन मैं इस तरह उससे दस्तबरदार भी नहीं हो सकता, और यूं मैं खौफनाक सूरत हाल से दो चार था, और बहुत दिनों तक मैं इसी बात के मुतालिक सोचता रहा, और मैं इतना बुजदली का शिकार हुआ कि उसे शादी के लिए ना कह सका, और हर रात मैं अपना जहन इस बात के लिए तैयार करता था कि आज मैं उसे शादी के लिए कहूंगा, और जब मैं, ओ वो क्या होती हैं, तितलियां या कुछ और जिन्हें आप बार पकड़ते हैं, आप सब भाइयों को बाहर यह तजर्बा हासिल हुआ होगा। और सबसे मजाका खेज बात ये थी कि मेरा चेहरा हंसने लगता था और मैं नहीं जानता था, और मैं उसे शादी का ना कह सका। बस मैं अंदाजा कर सकता हूँ कि आप हैरान होंगे, फिर मैंने शादी कैसे कर ली? आप जानते हैं क्या हुआ? मैंने उसे खत लिखकर पूछा, और इस तरह अब मैंने सिर्फ डियर मिस ही नहीं बल्कि और कुछ भी लिखा था। आप जानते हैं, इस खत में अपनायत का पहलू गालिब था, और ये महज एक मुआयदा ना था, बल्कि मैं जितना अच्छा लिख सकता था उतना ही अच्छा लिखा। और मैं उसकी माँ से कुछ डरता था, उसकी माँ वो जरा सख्त किस्म की थी, और उसका वालिद हॉलैंड का एक बड़ा ही शरीफ बशिंदा था, वो बड़ा नरम और खुश मजाज था, वो रेलवे के मुलाजमों के अदारे का बानी था, रेलवे के काम में वो उन जमानों में $500 कमाता था, और मैं जो उसकी बेटी से शादी करना चाहता था सिर्फ 20 सेंट फी घंटा कमाता था। ओ, मैं जानता था कि इससे काम नहीं चलेगा। और उसकी माँ बहुत, अब वो खुद बड़ी अच्छी खतून थी, और वो आला तबके के लोगों से ताल्लुक रखने वाली थी, और आप जानते हैं, इसलिए मैं उनकी नज़र में कोई कारामद शख्स नहीं हो सकता था, आप जानते हैं, और उसकी माँ किसी भी तरह से मुझे नहीं चाहती थी। मैं तो एक गंवार देहाती लड़का था, और उसकी माँ चाहती थी कि होप किसी अच्छे तबके के लड़के को अपनाए, और मैं समझता था कि वो औरत दुरुस्त थी, और इस तरह, लेकिन ये मैं उस वक्त सोच ना सका। बस मैंने सोचा, ठीक है, अब मैं नहीं जानता कि ये कैसे होगा, मैं उसके डैडी से नहीं पूछ सकता, और मैं यकीनन उसकी माँ से भी नहीं पूछ सकता था, इसलिए मैंने पहले लड़की से पूछा। बस मैंने एक खत लिखा और सुबह काम पर जाते हुए मैंने डाक के डिब्बे में डाल दिया। डाक के डिब्बे में, ये पीर की सुबह थी और हम बुध की शाम को गिरजाघर जाया करते थे, और इतवार के रोज सारा दिन उसे बताने की कोशिश करता रहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझ में हिम्मत ना थी। बस मैंने खत को डाक के डिब्बे में डाल दिया, और उस रोज काम करते हुए मैंने सोचा, अगर उसकी माँ ने खत पकड़ लिया हो तो, ओ मेरे खुदाया, तब मैं जानता था कि अगर उसकी माँ के हाथ खत लग गया तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा, क्योंकि उसकी माँ मुझे अहमियत नहीं देती थी। ठीक है, ये सोच सोच कर मेरे पसीने छूटने लगे। और उस बुध की रात जब मैं वहाँ आया, ओ मेरे खुदाया, मैंने सोचा मैं उधर किस तरह जाऊँगा, अगर खत उसकी माँ के हाथ लग गया हो तो वो यकीनन मेरी खबर ले लेगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि खत होप को मिला होगा, क्योंकि मैंने उस पर होप लिखा था। होप, ये उस लड़की का नाम था। और इस तरह मैंने सोचा कि मैं सिर्फ होप के नाम ही लिखूंगा। और इस तरह फिर मैं सोचने लगा कि हो सकता है वो खत उसकी माँ के हाथ ना लगा हो। बस मैंने इसी में बेहतरी समझी कि बाहर ठहरूं और हॉर्न बजाकर उसे बुला लूं। वो मेरे खुदाया, अगर किसी लड़के में इतनी हिम्मत भी ना हो कि लड़की के घर जाकर उसके दरवाजे पर दस्तक दे सके और लड़की के बारे में पूछ सके, तो वो बाहर रहकर भी कोई मकसद हासिल नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सच बात है, ये बड़ी बेवकूफी है, ये नकम्मापन है। बस मैंने अपनी पुरानी फोर्ड गाड़ी को खड़ा किया और आप जानते हैं मैंने उसे अच्छी तरह चमका रखा था, और बस मैंने जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। खुदा रहम करे, उसकी माँ दरवाजे पर निकल आई। मैं अपनी सांस काबू में ना रख सका और मैंने कहा, आ आ आप कैसी हैं मिसिज बरमबेक? उसने कहा, मैं ठीक हूँ। उसने पूछा, विलियम तुम्हारा क्या हाल है? और मैंने दिल में कहा, ओ विलियम। और उसने फिर कहा, क्या तुम अंदर नहीं आओगे? मैंने कहा, शुक्रिया, मैं दरवाजे से अंदर चला गया। मैंने पूछा, क्या होप तैयार हो चुकी है? और उसी लम्हे होप भी आ गई, जो तकरीबन 16 साल की लड़की थी। और उसने कहा, कैसे हो बिली? मैंने पूछा, तुम कैसी हो होप? और मैंने पूछा, क्या गिरजाघर जाने के लिए तैयार हो? उसने कहा, सिर्फ एक मिनट में। मैंने सोचा, ओ मेरे खुदाया, इसे खत नहीं मिला, इसे नहीं मिला, ये अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, ये अच्छा है। अगर वो खत होप को नहीं मिला तो ये बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि वो उसे मुझसे मंसूब करती। यूं मैंने बहुत अच्छा महसूस किया। और फिर जब मैं गिरजाघर पहुंचा, तो मैं सोच रहा था, अगर खत उसे मिल गया हो तो फिर क्या होगा? समझे, मैं कुछ सुन ना सका कि डॉक्टर डेविस ने क्या कहा। मैंने उस पर निगाह रखी और सोचता रहा, अगर खत इसे नहीं मिला तो यहाँ से निकलने के बाद मैं इससे पूछूंगा, तो वो मुझे इसके मुतालिक बताएगी। और मैं कुछ सुन ना सका कि भाई डेविस क्या बयान कर रहे थे। और मैंने फिर उस पर नजर की और सोचा कि मैं इसे छोड़ देना गवारा नहीं कर सकता, लेकिन और मैं यकीनन कुछ ना कुछ नतीजा सामने आएगा। इबादत के बाद हम घर जाने के लिए अपनी गाड़ी तक जाने के लिए गली में पैदल चले आ रहे थे। चांद भी पूरी तरह चमक रहा था, और आप जानते हैं, और मैंने उसकी तरफ देखा, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने उस पर नजर करके दिल में सोचा, हाँ लड़के, वो मेरे खुदाया, मैं इसे कैसे हासिल कर सकूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। मैं कुछ और आगे चला, और आप जानते हैं, फिर मैंने फिर उसकी तरफ देखा और कहा, आज रात तुम कैसा महसूस कर रही हो? उसने कहा, हो मैं ठीक हूँ। जब हम घर पहुँचे तो पुरानी फोर्ड गाड़ी को रोका और नीचे उतरे, और आप जानते हैं, और गाड़ी के गिर्द घूमकर कोने के पास से गुजरकर उसके घर तक पहुँच गए। मैं उसके साथ दरवाजे तक चला जा रहा था। मैंने सोचा, तुम जानते हो, शायद खत उसे मिला ही नहीं, इसलिए मुझे भी खत को भूल जाना चाहिए। इस तरह मुझे इज्जत का एक और हफ्ता मुयस्सर आ जाएगा। यूं मैं बहुत अच्छा महसूस करने लगा। उसने कहा, बिली, क्या सब ठीक है? मैंने कहा, जी हाँ। फिर उसने कहा, मुझे तुम्हारा खत मिल गया है, ओ मेरे खुदाया। मैंने कहा, क्या तुम्हें मिल गया है? उसने कहा, हाँ। अच्छा, लेकिन वो चलती रही और उसने कुछ ना कहा। मैंने दिल में कहा, खातून, मुझे कुछ तो बता दे, या तो मुझे भगा दे, या मुझे बता दे कि तूने क्या सोचा है। और मैंने कहा, क्या तुमने उसे पढ़ा था? उसने कहा, हाँ। मेरे अजीजो, आप जानते हैं कोई औरत किस तरह तजस्सुस में डालती है। ओ, मैं इस तरह से नहीं चाहता था, क्या आप समझ रहे हैं? देखें, लेकिन किसी भी तरह, आप जानते हैं, मैंने सोचा, अब तुम कैसे कहोगे, समझे? और मैं भी आगे चलता रहा। मैंने कहा, तुमने सारा खत पढ़ लिया था? उसने कहा, हाँ। हम तकरीबन दरवाजे के करीब पहुंच गए थे और मैंने दिल में कहा, लड़के, अंदर मत जाना, क्योंकि वहां से तुम्हारे लिए भागना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मुझे यही मालूम कर लेना चाहिए। और मैं यूं इंतजार करने लगा। और उसने कहा, बिली, मैं ऐसा करना पसंद करूंगी। उसने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं उसकी रूह को खुदा बरकत दे। अब वो जलाल में जा चुकी है। उसने कहा, मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करती हूँ। फिर कहा, मैं सोचती हूँ कि हमें इस बात के मुतालिक अपने वालदेन को बता देना चाहिए। क्या तुम भी ऐसे नहीं सोचते? मैंने कहा, प्यारी सुनो, इस जिम्मेदारी को आधा आधा कर लेंगे। मैंने कहा, अगर तुम अपनी माँ को बता सको तो मैं तुम्हारे वालिद को बता दूंगा। आवाज ही से खतरनाक हिस्सा उसको मिल गया था। उसने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें पहले मेरे वालिद को बताना होगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं उन्हें इतवार की रात को बता दूंगा। और फिर इस तरह इतवार की रात भी आ गई और मैं उसको गिरजाघर से वापस उसके घर में ले आया और उसका ध्यान मेरी तरफ था। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 9:30 बज चुके थे और ये मेरे जाने का वक्त था। चार्ली साहब अपनी मेज पर बैठे कुछ टाइप कर रहे थे और मिसिस बर्मबैक कोने में बैठी क्रोशिये से कुछ बुन रही थी। आपको मालूम है वो किस तरह से वो कुंडियों सी चीजों में लगाई जाती हैं, और आप इससे वाकिफ हैं। मैं नहीं जानता आप इसे क्या कहते हैं, बस वो इस तरह का काम कर रही थी और होप मेरी तरफ देखे जा रही थी। और आप जानते हैं, उसने माथे पर बल डालते हुए अपने डैडी की तरफ इशारा किया और मैं, ओ मेरे खुदाया, मैंने सोचा क्या होगा कि अगर उसने इनकार कर दिया। और ये सोचता हुआ मैं दरवाजे की तरफ चल दिया और चलते हुए मैंने कहा, अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि अब मुझे चलना चाहिए। मैं दरवाजे की तरफ चलने लगा और वो भी मुझे दरवाजे तक छोड़ने के लिए मेरे साथ चल पड़ी। वो हमेशा दरवाजे तक आती थी और मुझे शब्बा खैर कहती थी। बस मैं दरवाजे की तरफ चलता गया और उसने कहा, क्या तुम डैडी को नहीं बताओगे? मैंने कहा, मैंने कहा, मैं यकीनन बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूं। वो कहने लगी, मैं वापस चली जाती हूं और तुम डैडी को बाहर बुला लो। बस वो वापस चली गई और मैं तन्हा खड़ा रह गया। और मैंने आवाज देते हुए कहा, चार्ली साहब ने मुड़कर कहा, हाँ बिल, क्या बात है? मैंने कहा, क्या आप एक मिनट के लिए मेरी बात सुनेंगे? उसने कहा, यकीनन सुनूंगा। वो अपने मेज से उठ गए। मिसिस बर्मबैक ने पहले अपने खावंद की तरफ, फिर होप की तरफ और फिर मेरी तरफ देखा और मैंने कहा, क्या आप बरामदे में तशरीफ नहीं लाएंगे? उसने कहा, हाँ, मैं बाहर आ जाता हूँ। यूं वो बाहर आ गया। मैंने कहा, आज बड़ी खूबसूरत रात है, क्या नहीं है? उसने कहा, हाँ, ऐसा ही है। मैंने कहा, यकीनन कुछ गर्मी सी भी है, यकीनन ऐसा ही है, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने कहा, मैं बड़ा सख्त काम करता हूँ। मैंने कहा, आप जानते हैं, यहाँ तक कि मेरे हाथों में चंडियाँ पड़ गई हैं। उसने कहा, तुम उसे अपना सकते हो, ओ मेरे खुदाया, तुम उसे अपना सकते हो। मैंने दिल में कहा, हो ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा, चार्ली साहब, क्या आप सच कह रहे हैं? उसने कहा, मैंने कहा, देखें चार्ली साहब, मैं जानता हूँ वो आपकी बेटी है और आप साहिबे हैसियत हैं। और उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, सुनो बिल, दौलत इंसान की जिंदगी में सब कुछ नहीं होती। उसने ऐसा ही कहा। मैंने कहा, चार्ली साहब, मैं सिर्फ 20 सेंट फी घंटा कमाता हूँ, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और वो मुझसे मोहब्बत करती है। चार्ली साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उसे खुश रखने के लिए इतना काम करूँगा कि मेरे हाथों की चंडियाँ भी घिस जाएंगी। मैं आखिर तक उसके साथ वफादार रहूँगा। उसने कहा, मुझे यकीन है बिल। उसने कहा, सुनो बिल, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। उसने कहा, तुम जानते हो कि खुशोखुर्मी का इंसार दौलत पर नहीं होता। उसने फिर कहा, बस उसके साथ अच्छा सलूक करना और मैं समझता हूँ कि तुम ऐसा ही करोगे। मैंने कहा, शुक्रिया चार्ली साहब, मैं यकीनन ऐसा ही करूँगा। अब अपनी माँ को बताने की उसकी बारी थी। मैं नहीं जानता कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन हमारी शादी हो गई। बस जब हमारी शादी हुई तो हमारे पास घरेलू इंतजाम के लिए कोई चीज ना थी। मेरा ख्याल है कि हमारे पास $2 या $3 थे। इस तरह हमने एक मकान ले लिया जिसका महाना किराया $4 था। ये छोटी सी 2 कमरों पर मुश्तमिल जगह थी। किसी ने हमें एक पुराना लेटने वाला पलंग दे दिया और मैं समझता हूँ कि आप में से किसी ने ऐसा पुराना लेटने वाला पलंग नहीं देखा होगा। किसी ने वो हमें दे दिया था। मैं सेयर्स एंड रोबोक्स वालों से एक मेज और 4 कुर्सियां ले आया, लेकिन उन पर रंग नहीं किया गया था। लेकिन आप जानते हैं कि उस वक्त हमने वो चीजें खरीद ली। और यूं फिर मैं मिस्टर वेबर की दुकान पर चला गया, जो कि डीलर था, और खाना बनाने के लिए एक चूल्हा खरीद लिया और मैंने 75 सेंट चूल्हे के और $1 कुछ दूसरी चीजों के लिए दिए, जिसमें काफी चीजें आ गईं। और इसी तरह हमने घर का इंतजाम किया। और मुझे याद है कि जो कुर्सियां मैं लाया उन पर गास के तिनके इस्तेमाल किए गए थे और तब मैंने उन कुर्सियों को रंग किया और वो बेशक हम फिर भी बड़े खुश थे, हम एक दूसरे को चाहते थे और यही सबसे जरूरी चीज थी। और खुदा के रहमो करम के बायस हम जमीन पर दुनिया का सबसे खुश व खुर्रम जोड़ा थे। मैंने ये सबक हासिल किया कि खुश व खुर्रमी का इंसार इस पर नहीं कि हमारे पास दुनिया की कितनी चीजें हैं, बल्कि इस बात पर है कि जो हिस्सा हमने पाया है उससे हम कितना मुतमीन हैं। और यूं कुछ अरसे के बाद खुदा नीचे आया और उसने हमारे छोटे से घर को बरकत दी और हमारे यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम बिली पॉल रखा गया। वो इस वक्त ठीक यहाँ इस इबादत में मौजूद है। और इसके थोड़े अरसे बाद यानी 11 माह बाद खुदा ने हमें और बरकत दी और हमारे यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम शारून रोज रखा गया, जो कि लफ्ज शारून के गुलाब से लिया गया था। और मुझे याद है कि एक दिन मैंने कुछ पैसे बचा रखे थे और मैं छुट्टियाँ मनाने की नीयत से पापा झील पर मछलियाँ पकड़ने जा रहा था। और वापसी के रास्ते में और इस अरसे के दौरान मैं अपनी तब्दीली का वाक्या छोड़ रहा हूँ। मेरी जिंदगी तब्दील हुई और मेरी मखसूसियत डॉक्टर रॉय डेविस ने मिशनरी बैप्टिस्ट चर्च में की और फिर मैं एक खादम बन गया और जेफरसन व्हील में एक गिरजा तामीर किया। तब मैंने वहाँ खुदा का कलाम सुनाया। मैं उस छोटी सी कलीसिया में पासबानी का काम सरंजाम दे रहा था और मैंने 17 साल उस कलीसिया में पासबानी का काम किया, मगर कभी भी किसी से कोई रुपया पैसा न लिया। मैं लेने पर ईमान नहीं रखता था, हत्ता के वहाँ चंदे की थैली भी नहीं थी। बस जो दय यकीन आती थी उनके लिए गिरजाघर की पिछली जानेब एक डब्बा रखा हुआ था जिस पर ये छोटी सी ऐत लिखी हुई थी, जो कुछ तुमने इन छोटों में से एक के साथ किया तो वही मेरे साथ किया। और हमने गिरजाघर का कर्ज इसी तरह से उतारा था। हमने 10 साल के लिए कर्जा लिया था कि इस अरसे में कर्ज चुका देंगे, लेकिन हमने 2 साल से भी कम अरसे में कर्ज अदा कर दिया। लेकिन मैं किसी भी किस्म का हदिया कभी नहीं लेता था। मेरे पास चंद डॉलर थे जो मैंने छुट्टियां गुजारने के लिए बचाए थे, वो भी फाइन शर्ट फैक्ट्री में काम करती थी। वो बड़ी प्यारी दशीजा थी और उसकी कब्र शायद आज भी बर्फ का ढेर हो, लेकिन वो अब भी मेरे दिल में जगह रखती है। मुझे याद है कि उसने मेरी मदद करने के लिए सख्त मेहनत की ताकि मैं इस झील पर मछलियां पकड़ने जा सकूं। और जब मैं झील से वापस आ रहा था तो इंडियाना के मिशवाका और साउथ बैंक में देखना शुरू किया तो मैंने ध्यान दिया कि कुछ कारों और गाड़ियों के पीछे ये अल्फाज लिखे हुए थे, सिर्फ यस्सु। और मैंने सोचा ये कुछ अजीब सा लगता है, सिर्फ यस्सु। और मैंने इस तहरीर पर गौर करना शुरू कर दिया और ये साइकिल, फोर्ड, कैटलग गाड़ियाँ वगैरह जो कुछ भी था और ये कहीं जा रही थी और उन पर लिखा था सिर्फ यस्सु। मैंने चंद एक का ताकुब किया और वो एक बड़े गिरजाघर में जा पहुँची और मुझे पता चला कि वो पेंतीकोस्टल हैं। मैंने पेंतीकोस्टल का हाल सुन रखा था कि उनमें से कुछ जनूनी होते हैं जो फर्श पर लेट जाते हैं और मुंह से कुछ बुड़बड़ाते हैं और इसी तरह की और बातें मुझे बताई गई थी, इसलिए मैं इसके साथ कोई वास्ता रखना नहीं चाहता था। मैंने उन लोगों पर तवज्जो की कि वो सब अंदर जा रहे थे और मैंने दिल में कहा मैं भी जरूर अंदर जाऊंगा। बस मैंने अपनी फोर्ड गाड़ी खड़ी की और अंदर चला गया और वो बेहतरीन हमदोसना गा रहे थे जो आपने कभी अपनी जिंदगी में सुनी हो। और मुझे पता चला कि वहाँ दो बड़ी कलीसियाएं थी जो PA of JC और PA of W कहलाती हैं। आप में से बहुत से लोगों को ये पुरानी तंजीमें याद होंगी। मेरा ख्याल है कि वो मुत्तहिद होकर अब यूनाइटेड पेंटिकास्टल कलीसियाएं बन गई हैं। खैर, मैंने उनके कुछ उस्तादों के पैगाम सुने। वो उस मकाम पर खड़े होते हो और वो यस्सु के बारे में सिखा रहे थे कि वो कितना अजीम है और उसकी हर बात कितनी अजीम है, और फिर रूलकुल्स के बपतिस्मे की तालीम दे रहे थे। मैंने सोचा ये क्या बयान कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद एक शख्स खड़ा हो गया और गैर जुबाने बोलने लगा। खैर, मैंने अपनी सारी उम्र में ऐसी चीज का कभी जिक्र ना सुना था। और एक औरत भी निकल आई और वो पूरे जोर से भाग रही थी जितनी कि वो भाग सकती थी। फिर वो सब खड़े हो गए और भागना शुरू हो गए। और मैंने सोचा ठीक है भाई, लेकिन यकीनन ये लोग कलीसियाई अतवार से ना वाकिफ हैं। ये चीख रहे हैं और बुलंद आवाज से चिल्ला रहे हैं। मैंने दिल में सोचा ये किस किस्म का ग्रोह है, लेकिन आपको इल्म होना चाहिए कि मैं जितनी ज्यादा देर वहाँ बैठा रहा उतना ही ज्यादा उन्हें पसंद करने लगा। यहाँ कोई ऐसी चीज थी, यकीनन वहाँ कोई चीज थी जो दर हकीकत अच्छी थी। और मैंने गौर से उन्हें देखना शुरू कर दिया और ये सिलसिला जारी रहा। मैंने दिल में कहा मैं कुछ देर इन लोगों को और बर्दाश्त करूंगा क्योंकि मैं दरवाजे के करीब ही हूं, और अगर कोई अफरा तफरी पैदा हुई तो मैं दरवाजे से भाग जाऊंगा। मैं जानता हूं कि मेरी कार किस कोने में खड़ी हुई है। मैंने दूसरे मुबल्लिगीन को भी सुनना शुरू कर दिया जिनमें उल्मा भी थे और तुलबा भी थे। इससे मैंने सोचा ये अच्छी बात है। और फिर रात के खाने का वक्त हो गया और उन्होंने कहा सब खाने के लिए आ जाएं। मैंने दिल में कहा जरा ठहर जा, मेरे पास घर जाने के लिए पौने दो डॉलर थे और मैं गाड़ी में तेल डलवाने के लिए मेरे पास यही पैसे थे जिसके जरिए मुझे घर पहुंचना था। मेरी फोर्ड गाड़ी पुरानी थी, ये बहुत ही पुरानी गाड़ी थी, ये तेज नहीं थी, ये इस तरह थी जैसे यहाँ बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई है और ये सिर्फ पुरानी थी। और मैं समझता था फोर्ड 30 मील फी घंटा की रफ्तार से सफर कर सकती है, लेकिन बिला शुबा ये 15 मील जाने का और 15 मील वापस आने का, क्या आप समझ गए हैं, इनको जमा करें तो 30 मील बनता है। और बस मैंने दिल में सोचा ठीक है, मेरा ख्याल है कि मैं बाहर चला जाता हूँ। और बाद में मैं रात की इबादत के लिए ठहर गया। और फिर उस खादम ने कहा तमाम खादम खा वो किसी भी तंजीम से हों प्लेटफार्म पर आ जाएं। और वहाँ तकरीबन 200 अफराद थे, मैं भी प्लेटफार्म पर चला गया। और फिर उसने कहा अब हमारे पास इतना वक्त नहीं कि आप सबको कलाम सुनाने का मौका दिया जाए। उसने कहा बस बारी बारी आकर अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आप कहाँ से हैं। और जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा विलियम ब्रैनम बैप्टिस्ट जेफरसन व्हील इंडियाना, और फिर चलते हुए नीचे आ गया। मैंने बाकी सबको यूं कहते हुए सुना पेंटिकोस्टल 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 पी ए ऑफ डब्ल्यू पी ए जे सी पी ए डब्ल्यू पी। जब मैं चलता हुआ गया तो मैंने सोचा ठीक है, मगर ये मेरा ख्याल था कि मैं उनके बीच में बदसूरत बतख के बच्चे की तरह था, इसलिए मैं बैठ गया और इंतजार करने लगा। और उस रोज उनके पास बड़े अच्छे नौजवान खादम थे जिन्होंने बड़े जोरदार पैगाम दिए थे। और फिर उन्होंने कहा आज रात हमारे लिए पैगाम पेश करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं, और मेरा यकीन है कि उन्होंने इसके लिए लफ्ज जो पुकारा इस्तेमाल किया वो एल्डर था, और वो अपने खादमों के लिए लफ्ज रेवरेंड की बजाय लफ्ज एल्डर इस्तेमाल करते थे। उन्होंने एक स्याह फाम बुजुर्ग आदमी को दावत दी जिसने पुराने मुनादों वाला कोट पहन रखा था। मेरा ख्याल नहीं कि आप में से किसी ने कभी उसे देखा होगा। आप जानते हैं उसकी पुश्त की तरफ कबूतर की दुम जैसा लंबा कपड़ा होता है जिसके साथ वेलवेट का कॉलर होता है, और इसके सिरे के ऊपर सफेद बालों का महज एक हल्का सा बाकी था। उस बेचारे बूढ़े आदमी का इस तरह का हुलिया था आप जानते हैं, और वो खड़ा हुआ और उसने रुख बदला। वहाँ तकरीबन सारे ही खादम यीशु के बारे में और उसकी अजमत के बारे में बता रहे थे कि यीशु कितना अजीम है और इसी तरह की और बातें। लेकिन उस बुजुर्ग बंदे ने अय्यूब की किताब में से मतन को लिया, तू कहाँ था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली और जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। और उस बूढ़े साथी को देखकर मैंने सोचा उन्होंने नौजवान खादमों में से किसी को क्यों नहीं बुलाया। बहुत वो जगह लोगों से बहुत भरी हुई थी और मैं सोच रहा था कि उन्होंने इस तरह क्यों नहीं किया। बस उस बुजुर्ग खादम ने ये बयान करने की बजाय कि यहाँ जमीन पर क्या हो रहा है, उसने ये बयान करना शुरू किया कि आसमान पर क्या हो रहा है। खैर वो यीशु को इब्तदा में वक्त के आगाज में ले गया और दूसरी आमद पर वाकई कोसे कजा पर ले आया। बिला शुबा मैंने उस वक्त तक कभी अपनी जिंदगी में ऐसा कलाम नहीं सुना था। और तकरीबन उसी वक्त रूह उस पर उतरा और उसने बहुत ऊंची छलांग लगाकर अपनी एड़ियां आपस में टकराई, अपने कंधे पीछे फेंके और प्लेटफार्म पर उछलते कहने लगा आप लोगों ने मुझे बोलने के लिए पूरा वक्त नहीं दिया, हालांकि उसे इससे ज्यादा वक्त मिला था जितना कि मुझे यहाँ मिला है। मैंने दिल में सोचा अगर ये चीज इस बूढ़े को इस तरह इस्तेमाल कर सकती है तो ये अगर मुझ पर आ जाए तो क्या करेगी। मैंने सोचा कि मुझे भी इसकी जरूरत है, इसलिए कि जब वो कलाम सुनाने आ रहा था तो मुझे उस बूढ़े साथी पर अफसोस हो रहा था, लेकिन जब वो प्लेटफार्म को छोड़कर जा रहा था तो मुझे खुद पर अफसोस हो रहा था और मैं उसे जाते देख रहा था। और वो रात मैंने बाहर गुजारी और मैंने दिल में कहा अब कल मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा कि मैं कौन हूँ। और उस रात मैंने जाकर अपनी पतलून को इस्त्री किया और मैंने खाने के लिए पुरानी रोटी के टुकड़े खरीदे और सोने के लिए मकई के खेतों में चला गया। और मैंने एक सिक्के के इव्ज पूरा बंडल खरीद लिया। मैंने एक नल से पीने के लिए पानी भर लिया क्योंकि मुझे इल्म था कि ये थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने पानी भर कर पिया और फिर रोटी के टुकड़े खाए और खाने के बाद दोबारा आकर पानी पिया। फिर मैं मकई के खेतों में चला गया, गाड़ी की दो सीटें निकाली और अपनी पतलून को एक सीट पर फैलाया और दूसरी सीट से दबाकर उसे इस्त्री किया। और उस रात तकरीबन मैंने सारी रात दुआ में गुजारी। मैंने कहा खुदावन ये मैं कहाँ आ गया हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे मजहबी लोग नहीं देखे। और मैंने कहा कि मेरी मदद कर ताकि मैं जान सकूं कि ये सब क्या है। और अगली सुबह मैं वहाँ पहुँच गया और हमें नाश्ते की दावत दी गई, लेकिन मैं बिला शुबा उनके साथ नाश्ते में शामिल नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास चंदा डालने के लिए कुछ नहीं था। मैं फौरन वापस चला गया और अगली सुबह जब मैं अंदर गया, बस मैंने वही रोटी के टुकड़े खाए और मैं फिर इबादत में जाकर बैठ गया। उन लोगों के पास एक माइक्रोफोन था और मैंने पहले कभी माइक्रोफोन नहीं देखा था, इसलिए मैं उस चीज से खौफजदा था। बस उसके साथ एक तार ऊपर लटकी हुई थी और एक नीचे एक लटक रही थी, ये लटकाने वाले माइक की तरह था। और एक आदमी ने कहा, कल रात यहाँ प्लेटफॉर्म पर एक नौजवान बैप्टिस्ट खादम था। मैंने सोचा, ओहो, अब मेरे काम करने का वक्त आ गया। और मीटिंग चलाने वाले शख्स ने कहा, वो प्लेटफॉर्म पर सबसे कम उम्र खादम था, उसका नाम ब्रहनम था। क्या किसी को मालूम है कि वो कहाँ है? उसे यहाँ प्लेटफॉर्म पर आने के लिए बताएं, हम चाहते हैं कि आज सुबह उनसे पैगाम सुने। ओ मेरे अजीजो, मैंने आधे बाजुओं वाली शर्ट और नकम्मी सी पतलून पहन रखी थी। आपको मालूम है, जबकि हम बैप्टिस्ट लोग इस बात पर एतकाद रखते हैं कि प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए आपका सूट अच्छा होना चाहिए, इस बात का आपको इल्म है। बस मैं अपनी जगह साकन बैठा रहा। और उस दौर में वो अपनी बड़ी कन्वेंशन शुमाली इलाकों में कराते थे, अपनी बैनल क्वामी कन्वेंशन, क्योंकि अगर जनूबी इलाके में कन्वेंशन होती तो स्याफाम लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते थे। उनके यहाँ स्याफाम लोग भी मौजूद थे और मैं जनूबी बशिंदा था। मेरे कॉलर को कल्फ लगी हुई थी और आप समझ गए, और मैंने सोचा कि मैं किसी दूसरे से बेहतर हूँ। और उस सुबह यूँ हुआ कि मेरे साथ एक स्याफाम भाई भी बैठा हुआ था, और जब मैं बैठा तो उस पर निगाह डाली तो मैंने दिल में सोचा, खैर है, ये भी तो भाई है। और उस शख्स ने फिर कहा, क्या किसी को इल्म है कि विलियम ब्रहनम कहाँ बैठा हुआ है? मैं इस तरफ अपनी सीट पर से नीचे होकर खुद को छुपाने लगा। उसने फिर कहा, और दूसरी दफा फिर उसने ऐलान करते हुए कहा, क्या बाहर कोई ऐसा आदमी है? उसने माइक अपनी तरफ खींचा, जिसे मालूम हो कि विलियम ब्रहनम कहाँ पर मौजूद है, उसे बताइए कि हम उससे आज सुबह पैगाम सुनना चाहते हैं, जो जनूबी इंडियाना का बैप्टिस्ट खादम है। और आप जानते हैं, मैं साकिन बैठा रहा और छुपने के लिए नीचे झुक गया। किसी भी तरह मुझे कोई शख्स नहीं जानता था। उस स्याफाम जवान ने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या आपको मालूम है कि वो कहाँ है? मैंने सोचा था कि मुझे इसे झूठ बोलना था या कुछ और करना था, इस तरह मैंने कहा, यहाँ नीचे हो जाओ। उसने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है जनाब? मैंने कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं ही हूँ। उसने कहा, ठीक है, तो फिर उठकर ऊपर जाओ। और मैंने कहा, नहीं, मैं ऊपर नहीं जा सकता। देखो, मैंने कहा, मैंने कितनी खराब पतलून और आधे बाजू वाली शर्ट पहन रखी है। मैंने कहा, इसलिए मैं वहाँ ऊपर नहीं जा सकता। उसने कहा, वो लोग ये नहीं देखते कि तुमने कैसा लिबास पहन रखा है, उठकर ऊपर चले जाओ। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैंने उस नौजवान से कहा, खामोश रहो और अब कुछ न कहना। एक मिनट के बाद वो फिर माइक पर आया और बोला, क्या किसी को मालूम है कि विलियम ब्रहनम कहाँ है? उसने कहा, वो यहाँ है, वो यहाँ है, वो यहाँ है। ओ मेरे अजीजो, आप जानते हैं कि मैं टी शर्ट में मलबूत छुपा बैठा था, वो यहाँ है। उसने कहा, तशरीफ लाइए मिस्टर ब्रहनम, हम चाहते हैं कि आज आप पैगाम पेश करें। ओ मेरे खुदाया, उन तमाम खादमों और उन तमाम लोगों के सामने, और आप जानते हैं, मैं पांव घसीटता हुआ चल पड़ा, मेरा चेहरा सुर्ख हो गया और मेरे कानों की लुएं तपने लगी, और मैं प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा था। वो सीधा पतलून और टी शर्ट वाला मुनाद एक बैप्टिस्ट खादम माइक्रोफोन के पास जा रहा था, जिसे उसने पहले कभी देखा भी नहीं था, आप समझ गए। मैं वहाँ जाकर खड़ा हो गया और मैंने कहा, ठीक है, मगर मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। आप जानते हैं, मैं वाकई घबरा गया था और अनाड़ियों की तरह हाथ पांव मार रहा था, और मैंने लूका 16 निकाला और मैंने सोचा, अब अच्छा है, और मैं इस मजमून पर यूं बात शुरू करूंगा। उसने आलम रवा में अपनी आंखें खोली और चीख उठा, और मैं इस तरह मैंने मुनादी करना शुरू की, और आप जानते हैं, मैं मुनादी करता रहा, और ऐसा करते हुए मैंने बेहतर महसूस किया, और मैंने कहा, अमीर आदमी आलम रवा में पहुंचा, और वो चिल्ला उठा। इन तीन छोटे अल्फाज पर मुझे बहुत सा आवाज मिल गया, जैसे, क्या तू इस पर ईमान रखता है? और चट्टान से कहे, आप मुझे इन मौजूआत पर बहुत दफा सुन चुके हैं, और यही मौजू मेरे पास थे, और फिर वो चिल्ला उठा और फिर मैंने कहा वहाँ बच्चे नहीं थे, यकीनन वहाँ जहन्नम में नहीं थे, और वो चीख उठा। फिर मैंने कहा वहाँ फूल नहीं थे, इस पर वो चीख उठा। वहाँ खुदा भी नहीं था, वो चीख उठा। वहाँ मसीह भी नहीं था, इस पर वो चीख उठा। और फिर मैं खुद रो पड़ा। किसी चीज ने मुझे पकड़ लिया था। मेरे अजीजों, इसके बाद मैं नहीं जानता कि क्या वाकई हुआ था। जब मेरे हवास बहाल हुए तो मैं बाहर खड़ा हुआ था। वो लोग चीखों पुकार कर रहे थे और रो रहे थे, और ये मेरे लिए और सब लोगों के लिए बहुत ही अजीब था। जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो एक शख्स मेरे पास आया जिसने टेक्सास की बड़ी सी टोपी और बड़े बड़े बूट पहन रखे थे। चलता हुआ आया और कहा, मैं एल्डर फलां फलां हूँ। वो खादम जिसने मवेशी चराने वालों की तरह के बूट और कपड़े पहन रखे थे। तब मैंने सोचा, बहुत अच्छा, इस तरह तो मेरी पतलून इतनी बुरी नहीं है। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास टेक्सास में आकर बेदारी लाएं। जनाब, मुझे जरा लिख लेने दीजिए। और मैंने तहरीर कर लिया। वहां पर ही एक और आदमी मिला जिसने गोल्फ के खिलाड़ियों वाली पतलून पहन रखी थी, जिसे वो गोल्फ खेलने के दौरान इस्तेमाल करते थे। आप जानते हैं, उसके पास छोटी सी ब्लाउज पैंट थी। उसने कहा, मैं मियामी का एल्डर फलां फलां हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे अजीजों, गालबन लबास का इससे इतना ताल्लुक नहीं था। मैंने उससे कहा, इस तरफ देखो, और फिर सोचा सब ठीक है। फिर मैंने उन बातों को पल्ले बांध लिया और वापस घर पहुंच गया। मेरी बीवी मुझसे मिली तो कहने लगी, बिली, आप किस बात पर इतने खुश हैं? मैंने कहा, ओ, मैं फसल के आला तरीन फल से मिलकर आया हूं। मेरी प्यारी, जो कुछ तुमने अब तक देखा है ये सबसे बेहतर है। वो लोग अपने मजहब पर शर्मिंदा नहीं है। और हो, मैंने अपनी बीवी को इसके बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, प्यारी, ये देखो, दावत नामों की एक लंबी फहरिस्त है जो उन लोगों ने मुझे दी है। उसने कहा, क्या वो जुनूनी लोग तो नहीं? मैंने कहा, मैं नहीं जानता कि वो किस किस्म के लोग हैं, लेकिन वो ऐसी चीज को हासिल कर चुके हैं जिसकी मुझे जरूरत है, समझे? मैंने कहा, ये एक बात जिसके लिए मैं पूरी यकीन हूँ। मैंने कहा, मैंने एक 90 साल के बूढ़े को जवान होते हुए देखा है। मैंने कहा, मैंने कभी अपनी जिंदगी में ऐसी मुनादी नहीं सुनी, इसलिए कि ना ही कभी मैंने किसी बैप्टिस्ट को ऐसे कलाम सुनाते देखा है। मैंने कहा, वो इतनी देर तक बोलते हैं कि उनका सांस खत्म हो जाता है, उनके घुटने मुड़कर फर्श से जा लगते हैं, लेकिन वो सांस भरकर फिर उठ खड़े होते हैं, तो भी तुम उन्हें दो ब्लॉक के फासले से मुनादी करते सुन सकती हो। और मैंने कहा, मैंने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं सुना। मैंने कहा, वो बेगाना जुबान में बोलते हैं, और फिर कोई दूसरा शख्स खड़ा होकर बताता है कि वो किसके मुतालिक बोल रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं सुना। मैंने कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने कहा, देखो प्यारे, अब जब मैंने तुमसे शादी कर ली है तो मैं उस वक्त तक तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक मौत हमें जुदा न करे। उसने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी। उसने कहा, फिर हम ये लोगों को बताएंगे। मैंने कहा, ठीक है, तुम अपनी वालदा को बता दो और मैं अपनी वालदा को बता दूंगा। इस तरह मैंने और उसने अपनी वालदा को बता दिया। वालदा ने कहा, ठीक है बिली, तुम्हें यकीन है तो जिस काम के लिए खुदावन ने तुम्हें बुलाया है वही करो। और फिर मिसेज बरम बेग ने मुझे आने का पैगाम भेजा। जब मैं उनके पास पहुँचा तो उसने कहा, ये क्या बातें तुम करते फिरते हो? और मैंने कहा, ओ मिसेस बर्नबेक, मैंने बताया कि आप में से किसी ने कभी ऐसे लोगों को नहीं देखा। उसने कहा, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। मैंने कहा, जी मदाम। मैंने कहा, मैं माजरत चाहता हूँ। और उसने कहा, क्या तुम जानते हो वो जुनूनियों का ग्रोह है? मैंने कहा, जी नहीं मदाम, मैं ऐसा नहीं जानता। मैंने कहा, वो तो यकीनन बेहतरीन लोग हैं। उसने कहा, ये एक महज ख्याल है, तुम समझते हो कि मेरी बेटी को ऐसी चीज में खींच कर ले जाओगे? उसने कहा, ये बिद्दत है, वो और कुछ नहीं, महज कूड़ा क्रिकेट है जिसे दूसरी कलीसियाओं ने बाहर फेंक दिया है। उसने कहा, दर हकीकत तुम मेरी बेटी को ऐसी जगह पर नहीं लेकर जाओगे। मैंने कहा, लेकिन आप जानते हैं मिसेस बर्नबेक, मैं अपने दिल की गहराइयों से महसूस करता हूँ कि खुदावन चाहता है कि मैं उन लोगों के पास जाऊं। उसने कहा, तुम अपनी कलीसिया में वापस जाओ जब तक कि वो तुम्हारे लिए एक मकान का बंदोबस्त ना कर लें, और ऐसे आदमी सा तरीका इख्तियार करो जिसमें कुछ अकल हो। उसने कहा, लेकिन तुम मेरी बेटी को लेकर वहाँ नहीं जा सकते। मैंने कहा, जी मदाम। मैं मुड़ा और बाहर निकल आया और उसने रोना शुरू कर दिया। और उसने बाहर आकर कहा, बिली, अम्मी ने कहा कुछ भी कहा हो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगी। खुदा उसके दिल को बरकत दे। और मैंने कहा, ओ प्यारी, ये सब ठीक है। मैंने इस प्रोग्राम को तर्क कर दिया। उसने अपनी बेटी को ऐसे लोगों में जाने ना दिया क्योंकि उसके ख्याल में वो कूड़ा क्रिकेट से ज्यादा कुछ नहीं थे। इसलिए मैंने इस प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया, और ये मेरी जिंदगी की बदतरीन गलतियों में से एक थी जो मैंने कभी अपनी जिंदगी के दौरान की थी। बच्चों की पैदाइश के थोड़े अरसे बाद का वाकया है। एक दिन 1937 में सैलाब आ गया। सैलाब हमारे इलाके में आया और मैं उस वक्त गश्त पर था और बर्बाद होते हुए घरों से लोगों को बचा रहा था और सैलाब से लोगों को निकालने की कोशिश कर रहा था और मेरी अपनी बीवी बीमार हो गई, उसे शदीद तरीन नमूनिया हो गया था और वो उसे बाहर लाए। रेगुलर अस्पताल लोगों से इस कदर भरा था और हम उसे वहां ना ले जा सके और उसे सरकारी तिबी इंतजाम के एक मकाम पर ले गए जहाँ एक कमरा था और फिर उन्होंने मुझे वापस बुलाया। मैं हमेशा दरिया के किनारे पर रहा और कश्ती रानी का काफी तजुर्बा रखता था, इसलिए लोगों को सैलाब से बचाने के लिए कोशिश कर रहा था। और फिर उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, चेस्टनट स्ट्रीट में एक घर है जिसके लिए हमें जाना है, वहाँ एक माँ अपने बच्चे के हमरा फंसी हुई है। उन्होंने कहा, क्या आप समझते हैं कि आपकी मोटर बोट वहाँ जा सकती है? मैंने कहा, ठीक है, जो कुछ मुझसे हो सकता है मैं करूँगा। और मैं लहरों को चीरता हुआ वहाँ गया। दरिया का बंध टूट गया था और ओ मेरे खुदाया, सैलाब ने शहर का सफाया कर दिया था। मैं उसके लिए जितनी हिम्मत कर सकता था कर रहा था। आखिर तंग गलियों और मकामात के बीच में से गुजरता गया और फिर मैं उस जगह पहुंच गया जहां वो पुराना चौबारा था। पानी वहां दाखिल होना शुरू हो गया था। मैंने किसी के चीखने की आवाज सुनी और एक माँ मुझे बरामदे के दरवाजे के पास खड़ी हुई दिखाई दी। बड़ी बड़ी लहरें गुजर रही थी। ठीक है, मैं दूसरी तरफ जितनी दूर जा सकता था गया और पानी के दायरे में से गुजर कर उस घर की तरफ वापिस आया। मैंने कश्ती को ऐन वक्त पर खड़ा किया और उस दरवाजे के सतून के साथ बांध दिया और मैं दौड़कर अंदर गया और माँ को सहारा देकर कश्ती में सवार किया और इसी तरह उसके दो या तीन बच्चों को भी कश्ती में सवार किया। मैंने कश्ती को खोला और उन्हें लेकर वापस चला। मैं उस रास्ते से बाहर निकला और उन्हें किनारे की तरफ लेकर चला, शहर से तकरीबन 1.5 मील दूर। मैंने उनको किनारे पर पहुँचाया और जब मैं वहाँ पहुँच गया तो औरत बेदम हो गई और वो चिल्ला रही थी कि मेरा बच्चा। और मैंने इस औरत के रोने का मतलब समझा कि वो अपना कोई बच्चा घर में भूल आई है। उफ मेरे खुदाया, मैं फिर वापस गया जबकि बाकी लोग उस औरत को संभालने लगे थे और बाद में मुझे पता चला कि वो जानना चाहती थी कि उसका बच्चा कहाँ था। उसका एक 3 साल का बच्चा था जबकि मैं ये समझा कि किसी शीरखार बच्चे के लिए पुकार रही है। और मैं फिर दोबारा उनके घर की तरफ भागा और जब मैं कश्ती को एक जानिब ठहरा कर अंदर गया तो मुझे कोई बच्चा न मिला। बैरूनी दरवाजा टूट गया और वो घर गिर गया। मैं तेजी से भागा और उस टुकड़े को पकड़ा जो कश्ती के साथ तैर रहा था और मैं कश्ती पर चढ़ा और उसे खींचकर खोल दिया और ये मुझे बड़े दरिया के बहाव में ले गई। ये तकरीबन रात के 11 बजे का वक्त था और बारिश के साथ बर्फ और ओले भी गिर रहे थे। मैंने स्टार्ट करने वाली डोरी को खींचा और कश्ती स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन वो स्टार्ट ना हुई। फिर मैंने कोशिश की मगर वो स्टार्ट ना हुई और मैंने एक मरतबा दोबारा कोशिश की क्योंकि अगर मैं उस बहाव में आगे चला जाता तो मेरे नीचे आबशार आ जाती। मैं सर तोड़ कोशिश कर रहा था और मैंने दिल में सोचा, ओ मेरे खुदाया, यहाँ मेरे खात्मे की घड़ी आ गई है, ऐसा ही है। मैंने फिर सर तोड़ कोशिश की और मैंने कहा, खुदावंद मेहरबानी से मुझे इस तरह मरने ना दे। और मैंने डोरी को फिर खींचा और उसने मेरी तरफ वापस आकर कहा, उस ग्रोह के मुतल्लिक क्या ख्याल है जिसे कूड़ा क्रिकेट समझकर तू उसके पास नहीं गया, समझे? अफसोस। मैंने अपना हाथ दोबारा कश्ती पर रखा और कहा, खुदाया मुझ पर रहम कर, मुझे मेरी बीवी बच्चों और दीगर बीमारों से जुदा ना होने दे, मेहरबानी फरमा। मैं डोरी को बार बार खींचता रहा लेकिन वो स्टार्ट ना हुई और मैं नीचे गर्ज की आवाज़ सुन सकता था क्योंकि मैं सिर्फ चंद मिनट की दूरी पर था और मेरे अजीजो फिर मुझे मरना ही था। और मैंने कहा, खुदावन अगर तू मुझे माफ कर दे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं हर वो काम करूँगा। और फिर मैंने कश्ती ही में घुटने टेक लिए और बारिश के साथ ओले मेरे मुंह से टकरा रहे थे और मैंने कहा, तू जो कुछ कहेगा मैं वही करूँगा। और मैंने फिर डोरी खींची और कश्ती का इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने कश्ती की पूरी गैस खोल दी और आखिरकार किनारे पर पहुंच गया और फिर मैं गश्त करने वाले ट्रक को तलाश करने के लिए चला गया और मुझे ख्याल आया, उनमें से कुछ लोग वहां मौजूद थे। उन्होंने बताया, कहा कि लगता है कि हुकूमत के सब लोग चले गए हैं। मेरी बीवी और दोनों बच्चे उसमें थे। मैं पूरी रफ्तार से सरकारी अमले की तलाश में निकल खड़ा हुआ और पानी तकरीबन हर जगह 15 फीट तक मौजूद था। वहाँ एक मेजर था। मैंने उससे पूछा, मेजर साहब अस्पताल का क्या हुआ? उसने कहा, आप फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, क्या आपका कोई अजीज वहाँ था? मैंने कहा, जी हाँ, एक बीमार बीवी और दो बच्चे। उसने कहा, उन सबको निकाल लिया गया है। उसने कहा, वो एक एक बड़ी माल बरदार गाड़ी में हैं और उन्हें चार्लस्टोन ले जाया जा रहा है। मैंने भागकर अपनी गाड़ी ली और गाड़ी में अपनी कश्ती उसके पीछे रख ली और उस तरफ रवाना हो गया और फिर नीचे 2.5-3 मील चौड़ी एक खाई आ गई जहां दूर दूर तक खुश्की पर पानी ही पानी था और मैं सारी रात रास्ता ही तलाश करता रहा। उन लोगों में से किसी ने कहा कि माल बरदार गाड़ी ने तमाम नक्श मिटा डाले हैं। खैर, मैंने खुद को एक छोटे से जजीरे में पाया और 3 रोज तक वहाँ पड़ा रहा। मुझे ये सोचने के लिए बड़ा वक्त मिल गया था कि वो लोग कूड़ा क्रिकेट थे या नहीं। मेरे जहन से ये बार बार एक ही ख्याल टकरा रहा था कि मेरी बीवी कहाँ है। आखिरकार चंद दिन बाद जब मैं उस जजीरे से निकला और उसे पार किया तो मैंने अपनी बीवी को तलाश कर ही लिया। वो इंडियाना के शहर कोलंबस में बैप्टिस्ट ऑडिटोरियम में थी जहां उन्होंने एक किस्म का अस्पताल सा कायम किया था और मरीज सरकारी चारपाइयों पर पड़े थे। मैं जितनी तेजी से दौड़ सकता था उसकी तरफ दौड़ता हुआ गया और मैं उसे तलाश करने की कोशिश कर रहा था और यही चलाए जा रहा था, होप होप होप, तुम कहाँ हो। मैंने देखा कि वो एक चारपाई पर पड़ी हुई थी और उसे टीबी हो चुकी थी। उसने अपना कमजोर सा हाथ उठाया और कहा, बिली। मैं भागकर उसके पास गया और कहा, मेरी प्यारी होप। उसने कहा, क्या मैं खौफनाक दिखाई नहीं दे रही हूँ। मैंने कहा, नहीं जान, तुम तो बिल्कुल ठीक नजर आ रही हो। और फिर 6 माह तक हमने बहुत कोशिश की और अपनी तमाम तवानाइयां सरफ कर दी कि उसकी जिंदगी बच सके, लेकिन उसकी हालत रोज बरोज बिगड़ती गई। एक दिन मैं गश्त पर था और मैंने अपना रेडियो खोला हुआ था। मेरा ख्याल है कि उन्होंने मुझे रेडियो के जरिए पैगाम दिया और कहा, विलियम ब्रैनम के लिए पैगाम है कि फौरन अस्पताल में पहुंचें, उनकी बीवी करीबुल मर्ग है। मैं पूरी रफ्तार से अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। मैंने गाड़ी की सुर्ख बत्ती और सारन ऑन कर लिया और फिर मैंने अस्पताल पहुंचकर गाड़ी रोकी और भागता हुआ अंदर गया। अस्पताल के अंदर जाते जाते हुए मैंने अपने बचपन के दोस्त को देखा। उसका नाम सैम अडेर था। जब हम लड़के थे तो हम इकट्ठे मछलियां पकड़ा करते थे। ये वही डॉक्टर सैम अडेर था जिनके बारे में मुझे रोया मिली थी और उनके क्लिनिक के बारे में मैंने उनको बताया था और उसने कहा था कि अगर कोई रोया पर शक करता हो और वो इस रोया के सच होने या झूठ होने की तहकीक करना चाहता हो तो उसको दावत है। और फिर वो उस जगह तक आया और उसने अपना हैट उतार कर हाथ में पकड़ा हुआ था। उसने मेरी तरफ देखा और रोना शुरू कर दिया। मैं उसकी तरफ भागा और उसे अपने बाजुओं में ले लिया। उसने मुझे अपने बाजुओं में लेते हुए कहा, बिली, वो इस दुनिया से जा रही है। उसने कहा, मुझे इस बात का अफसोस है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की जो कि मैं कर सकता था। मैंने स्पेशलिस्ट डॉक्टर और हर चीज मुहैया की। मैंने कहा, सैम, यकीनन वो नहीं मरेगी। उसने कहा, हाँ, लेकिन वो जा रही है। और उसने कहा, बिल, वहाँ अंदर मत जाओ। मैंने कहा, सैम, मुझे अंदर जाना होगा। उसने कहा, ऐसा मत करो, बराए मेहरबानी ऐसा ना करो। मैंने कहा, मुझे अंदर जाने दो। उसने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैंने कहा, नहीं, तुम यहाँ बाहर ठहरो, मैं उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात में उसके साथ क्याम करना चाहता हूँ। उसने कहा, वो होश में नहीं है। मैं कमरे के अंदर गया और नर्स उसके पास बैठी हुई थी और वो भी रो रही थी क्योंकि वो और होप स्कूल में इकट्ठी पढ़ती थी। मैंने उस पर निगाह की तो उसने रोना शुरू कर दिया और उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और वहाँ से चल दी। मैंने उसकी तरफ देखा, उससे हाथ मिलाया। उसकी हालत ये हो गई थी कि वजन 120 पाउंड से कम होकर 60 पाउंड रह गया था और मैंने फिर उससे हाथ मिलाया। अगर मैं 100 साल भी जिंदा रहूं, तो इस वाक्य को ना भूलूंगा। वो घूमी और उसने अपनी पलकें उठाई और बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखा और मुस्कुराई और कहा, बिली, तुमने मुझे वापस क्यों बुलाया है। मैंने कहा, प्यारी, मुझे रकम मिल गई है। मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी। हम मकरूज हो गए थे और डॉक्टरों का सैकड़ों डॉलर का बिल था और मेरे पास अदा करने को कुछ नहीं था, इसलिए मुझे मशक्कत ही करनी थी। जब वो इस हालत में थी तो मैं दिन में 2 या 3 बार और रात को भी उसकी खबर लेता था। मैंने कहा, इस वापस बुलाने से तुम्हारा क्या मतलब है। उसने कहा, बिल, तुम इस चीज की मुनादी करते रहे हो, इसके बारे में बात कर चुके हो, लेकिन तुम्हें इसका कोई अंदाजा नहीं कि ये क्या है। मैंने कहा, तुम किस चीज की बात कर रही हो। उसने कहा, आसमान की। उसने कहा, देखो, उसने बताया कुछ मर्द और औरतें जिन्होंने सफेद लिबास पहन रखे थे मुझे मेरे घर की तरफ ले जा रहे थे। उसने कहा मैं पुरसकून और मुतमिन थी। उसने बताया बड़े खूबसूरत परिंदे एक से दूसरे दरख्त पर उड़ रहे थे। उसने कहा ये ख्याल करना कि मैं अपने आप में नहीं हूँ। उसने कहा बिली मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हमारी खता क्या है। उसने कहा नीचे बैठ जाओ। मैं सिर्फ बैठा ही नहीं बल्कि उसका हाथ पकड़कर घुटने टेक कर बैठ गया। उसने कहा क्या तुम जानते हो कि हमने कहाँ गलती की है। मैंने कहा हाँ मेरी प्यारी मैं जानता
हूँ।
उसने कहा हमें मामा की बात कभी नहीं सुननी चाहिए थी। वो लोग दुरुस्त थे। मैंने कहा मैं ये बात जानता हूँ। उसने कहा मुझसे ये वादा करो कि तुम उन लोगों के पास जाओगे। उसने कहा क्योंकि वो लोग दुरुस्त हैं। और उसने कहा मेरे बच्चों की परवरिश उसी तरीके पर करना। और मैं फिर उसने कहा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उसने कहा कि मैं इंतकाल कर रही हूँ लेकिन उसने कहा इसलिए मुझे कुछ खौफ नहीं। उसने कहा ये बहुत खूबसूरत है। उसने कहा सिर्फ एक ही बात मुझे नापसंद है बिल कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हें इन दो छोटे बच्चों की परवरिश भी करनी होगी। उसने कहा मुझसे वादा करो कि तुम अकेले नहीं रहोगे और मेरे बच्चों की परवरिश इंतहाई जिम्मेदारी से करोगे। एक 21 साला माँ के लिए ये बड़ी समझदारी की बात थी। और मैंने कहा हो मैं ये वादा नहीं कर सकता। उसने कहा बराए मेहरबानी मुझसे वादा करो। उसने कहा मैं तुम्हें और कुछ बताना चाहती हूँ। उसने कहा क्या तुम्हें वो बंदूक पसंद थी। मैं बंदूकों का बहुत शौकीन था। और उसने कहा तुम उस दिन वो बंदूक खरीदना चाहते थे लेकिन उसकी पेशगी अदा करने के लिए तुम्हारे पास रकम नहीं थी। मैंने कहा हाँ मुझे याद है। उसने कहा मैं सिक्के जमा करके रकम बचाती रही हूँ ताकि तुम्हारी उस बंदूक की पेशगी रकम अदा हो सके। उसने कहा अब जब ये लम्हा गुजर जाए और तुम घर वापस जाओ तो दूसरे लेटने वाले पलंग पर कागज के नीचे तलाश करना और तुम्हें वहाँ रकम पड़ी मिल जाएगी। उसने कहा मुझसे वादा करो कि तुम वो बंदूक खरीद लोगे। आप नहीं जानते कि जब सिक्कों की शक्ल में मैंने $1.75 पड़े देखे तो मैंने कैसा महसूस किया। मैंने बंदूक खरीद ली। और फिर उसने कहा क्या तुम्हें याद है कि एक मर्तबा हमें फोर्ट वैन जाना था और तुम मेरे लिए जराबे खरीदने बाजार गए थे। मैंने कहा हाँ मुझे याद है। मैं मछली के शिकार से वापस आया था। और उसने कहा हमें उस रात इबादत कराने के लिए फोर्ट वैन जाना था। और उसने कहा तुम्हें मालूम है कि मैंने तुम्हें बताया था कि उनकी दो इकसाम होती हैं, एक शैफान और दूसरी रेयान। क्या ये नाम दुरुस्त है रेयान शैफान? ठीक है अलबत्ता उनमें से शैफान बेहतर होती है। क्या ये दुरुस्त है? और उसने कहा था अब तुम मेरे लिए शैफान की लंबी टांगों वाली जराबे लाना। अब क्या आपको मालूम है कि जराबों का बलाई हिस्सा कितना लंबा होता है? लेकिन मैं खवातीन के लिबास के मुतल्लिक कुछ नहीं जानता था। बस मैं गली में जा रहा था और ये मुंह में पुकार रहा था शैफान 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 और इस लफ्ज को याद रखने की कोशिश में यही कहते जा रहा था शैफान शैफान शैफान। किसी ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा हेलो बिली। मैंने कहा हो हेलो हेलो शैफान 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 शैफान। मैं गली के कोने में पहुंचा तो आगे से मिस्टर सपोन मिल गए। उसने कहा हेलो बिली क्या आपको मालूम है कि पानी की सतह अब आखिरी चबूतरे तक पहुंच गई है। मैंने कहा ये तो काफी ज्यादा है क्या ये ठीक है? हाँ जब वो चला गया तो मैं सोचने लगा वो क्या चीज थी। मैं उसका नाम भूल चुका था। मुझे इतना इल्म था कि एक लड़की थेल्मा फोर्ड की एक स्टोर पर काम करती है और मैं जानता था कि वो जनाना जराबे फरोख्त करती है। बस मैं वहाँ चला गया और मैंने कहा हेलो थेल्मा। और उसने कहा हेलो बिली आप कैसे हैं होप कैसी है? और मैंने कहा हम बिल्कुल ठीक हैं। मैंने कहा थेल्मा मैं होप के लिए एक जोड़ी मोजे खरीदना चाहता हूँ। उसने कहा होप तो मोजे नहीं पहनती। मैंने कहा हाँ मुतरमा वो यकीनन नहीं पहनती। उसने कहा तो आपका मतलब है जराबे? ओ हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने कहा क्या चीज है? मैंने दिल में सोचा अफसोस कि मैंने कितनी जहालत का मुजाहरा किया है। उसने कहा वो कौन सी जराबे चाहती हैं? मैंने दिल में सोचा अफसोस मैं तो भूल गया हूँ। मैंने कहा आपके पास कौन सी किस्म है? उसने कहा ठीक है हमारे पास रेयान है। मुझे उनके फर्क के मुतल्लिक कुछ नहीं पता था कि रेयान और शैफान में क्या फर्क है। दोनों की आवाज़ यकसा है। मैंने कहा मैं यही चाहता हूँ। उसने कहा मैंने कहा एक जोड़ा फुल स्टाइल वाला दे दें। और उसने कहा यहाँ भी मैंने गलती की है। क्या लफ्ज होता है फुल फैशन? जी हाँ फुल फैशन होता है और इस तरह मैंने कहा था एक जोड़ी दे दें और जब उसने जराबे मेरे हवाले की तो उनकी कीमत 30 सेंट थी 20 या 30 सेंट थी जो तकरीबन आधी कीमत थी। खैर मैंने कहा मुझे उसकी दो जोड़ी निकाल दें समझे। और जब मैं घर वापस आ गया तो मैंने कहा प्यारी तुम जानती हो कि जब तुम औरतें खरीदारी करने किसी दुकान पर जाती हो तो कितना झगड़ा करती हो। आप लोगों को इल्म है कि ख्वातीन कितना शोर करती हैं। और मैंने कहा लेकिन यहाँ देखो जितनी कीमत में तुम एक जोड़ी खरीदती हो मैं उसमें दो जोड़ियां खरीद लाया हूँ समझे। मैंने कहा ओ ये मेरी जाती काबिलियत है। देखें मैंने कहा तुम्हें इल्म होना चाहिए कि मैंने इन्हें थेल्मा से खरीदा है। मैंने कहा शायद उसने मुझे ये आधी कीमत में दे दी हूँ। उसने कहा क्या तुमने शैफान की जराबें खरीदी हैं? मैंने कहा जी हाँ मोहतरमा। मैं नहीं जानता था कि इनमें फर्क क्या है इसलिए कि मेरे लिए ये दोनों अल्फाज एक जैसे थे। और उसने मुझे बताया और मुझसे कहा था कि बिली ऐसा नहीं है तो मुझे हैरत हुई क्योंकि जब वो फोर्ट वेन पहुंची तो उसने जराबों की दूसरी जोड़ी खरीदी थी। उसने कहा कि वो जराबे मैंने तुम्हारी वालदा को दे दी थी। उसने कहा कि ये जराबें बूढ़ी औरतों के पहनने के लिए होती हैं। मैंने कहा मैं इस बात की माफी चाहता हूँ। कहा अरे मेरी जान ये सब ठीक है। उसने कहा अब अकेले मत रहना। और उसने कहा वो नहीं जानती कि चंद ही घंटों में क्या होने वाला है। मैंने उसके हाथ पकड़े हुए थे जब खुदा के फरिश्ते उसे लिए जा रहे थे। मैं घर चला गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं रात को लेटा और मैंने गालबन किसी की आवाज सुनी। मैंने ख्याल किया कि ये एक छोटा चूहा था जिसकी आवाज मैंने पुराने जंगले में से सुनी जहां हम कागज डालते थे। और मैंने पांव के साथ दरवाजे को बंद किया तो उसके पीछे होप का एक लिबास लटका हुआ था और वो उस मुर्दा खाना में पड़ी हुई थी। थोड़ी ही देर गुजरी तो किसी ने मुझे आवाज दी और कहा बिली ये भाई फ्रैंक ब्रॉय थे। उसने कहा तुम्हारी बच्ची मर रही है। मैंने कहा मेरी बच्ची? उसने कहा हाँ शारून रोज। उसने बताया कि अब डॉक्टर वहाँ मौजूद है और कहा कि बच्ची को गर्दन तोड़ बुखार हो गया है जो उसे अपनी माँ से मुंतकिल हुआ है और बताया कि बच्ची अब मर रही है। मैं कार में बैठा और वहाँ पहुँच गया। मेरी प्यारी सी बच्ची वहाँ पड़ी थी और वो फौरन उसे अस्पताल ले गए थे। और मैं डॉक्टर साम से मिलने गया। वो आया और उसने कहा बिली तुम उस कमरे में ना जाना, तुम्हें बिली पॉल का ख्याल करना होगा। उसने कहा वो फोत हो रही है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे अपनी बच्ची को देखना है। उसने कहा नहीं तुम अंदर नहीं जा सकते। उसने कहा उसे गर्दन तोड़ बुखार है बिली, यूं तुम उसे बिली पोल को मुंतकिल कर दोगे। और मैं उसके बाहर जाने तक इंतजार करता रहा। मैं उसकी मौत के इंतजार में खड़ा नहीं रह सकता था और यूं उधर उसकी माँ तदफीन करने वाले मुहाफिज के इंतजाम में पड़ी थी। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे एक गुनाहगार पर मुश्किलात आती हैं। मैं फिसल कर दरवाजे से अंदर चला गया। जब शाम और नर्स बाहर निकल गए तो मैं अंदर तहखाने में चला गया। ये एक छोटा सा अस्पताल था और वो एक अलग थलग जगह पर पड़ी थी और मक्खियाँ उसकी नन्ही आँखों पर बैठ रही थी। उन्होंने एक जिसे हम मच्छरों से बचाव वाली जाली कहते हैं उसकी आंखों पर डाली हुई थी और उसकी पतली सी टांगे एंटन के बाइस ऊपर नीचे हो रही थी और उसके हाथ भी तेशंज के बाइस हिल रहे थे। मैंने उसकी तरफ देखा, वो अभी नन्ही मुन्नी बच्ची लग रही थी जिसकी उम्र कोई 8 माह के लगभग हो। और जब मैं अपने घर आया करता था तो आप जानते हैं मेरी बेटी की माँ उसे छोटे बच्चों को जैसे करते हैं लंगोट सा बांधकर सेन में एक जगह लटा देती थी। और जब मैं आकर हॉर्न बजाता था तो वो उठ जाती, गू 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 करती हुई मेरे पास आ जाती थी। आपको इल्म है। और अब मेरी वही लखते जिगर मौत की आगोश में जा रही थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा शेरी क्या तुम डैडी को जानती हो? क्या तुम अपने डैडी को जानती हो शेरी? और जब उसे देखा वो इतनी सख्त तकलीफ उठा रही थी कि उसकी खूबसूरत नीली आंखों में से एक आंख टेढ़ी हो गई थी। यूं लगा जैसे मेरा दिल फटकर बाहर आ गया है। मैं घुटनों के बल झुक गया और मैंने कहा खुदावन मैंने क्या किया है? क्या मैंने गलियों के मोड़ों पर मुनादी नहीं की? जो कुछ मैं समझता था मैंने किया है, इसको मेरे खिलाफ ना ले। मैंने कभी उन लोगों को कूड़ा क्रिकेट नहीं कहा था बल्कि मेरी सांस ने उन लोगों को कूड़ा क्रिकेट कहा था। फिर मैंने कहा कि मुझे अफसोस है कि ये सब इस तरह हुआ, मुझे माफ कर दे, मेरी बच्ची को मुझसे मत मत छीन। और जब मैं दुआ कर रहा था तो मैंने एक स्याह रंग की चादर सी नीचे आती देखी। मैं जान गया खुदा ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया था। अब मेरी जिंदगी का सख्त तरीन और बेवफा तरीन वक्त था। जब मैं उठा और शारून की तरफ देखा तो मैंने दिल में सोचा, शैतान ने मेरे जेन में डाला, ठीक है तेरा मतलब है कि जितनी मेहनत के साथ तूने मुनादी की है और जिस तरह तूने जिंदगी गुजारी है और जब तेरी ही बेटी का वक्त आया है तो खुदा ने तुझे जुटला दिया है। मैंने कहा ये सच है, अगर खुदा मेरी बच्ची को नहीं बचा सकता तो फिर मैं कुछ कहने से पहले मैं रुक गया। मैं नहीं समझ पा रहा था कि क्या करूं। और फिर मैंने यूं कहा, खुदावन तूने ये बेटी मुझे दी और तूने ही इसे ले लिया, खुदावन तेरा ही नाम मुबारक हो, अगर तू मेरी जान भी ले ले तो मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा। मैंने अपना हाथ उस पर रखकर कहा, प्यारी बेटी खुदा तुझे बरकत दे, डैडी तेरी परवरिश करना चाहता था, मैं अपने पूरे दिलो जान से तुम्हारी परवरिश करना चाहता था, इसलिए करना चाहता था कि तुम खुदा से प्यार करो, लेकिन प्यारी बेटी फरिश्ते तुम्हें लेने आ रहे हैं, डैडी तुम्हारे नन्हे जिस्म को नीचे लेकर जाएगा और तुम्हारी माँ के बाजुओं में लिटा देगा, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ दफन कर दूंगा, डैडी किसी रोज तुमसे मिलेगा, तुम बस अपनी माँ के हमरा मेरा इंतजार करना। जब उसकी माँ इंतकाल करने जा रही थी तो उसने जो आखिरी अल्फाज कहे थे, बिल तुम मैदान में ठहरना, मैंने कहा मैं, उसने कहा था, मैंने उससे कहा था जब खुदावंद आएगा तो अगर मैं खिदमत के मैदान में हुआ तो बच्चों से मिलूंगा और अगर मैं जिंदा ना रहा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम उस अजीम दरवाजे की दाहिनी तरफ खड़ी हो जाना और जब सब लोगों को अंदर आते हुए देखो वहाँ खड़ी होकर जोर जोर से पुकारना, बिल बिल बिल, जितनी बुलंद आवाज से मुमकिन हो, मैं तुमसे वहाँ मिलूंगा। तब मैंने उसे चूमा था और खुदा हाफिज कहकर रुखसत किया। आज मैं मैदान जंग में हूँ और ये वाकया तकरीबन 20 साल पहले का है। मैंने अपनी बीवी के साथ मुलाकात का वक्त तय किया था, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। जब नन्ही बच्ची फोत हो गई, तो मैं उसे उठाकर ले गया और उसकी माँ के बाजुओं में उसे लटा दिया और फिर हम उन्हें कब्रिस्तान ले गए। मैं वहाँ खड़ा मेथोडिस्ट खादम बाई स्मिथ को सुन रहा था जिन्होंने जनाजे की इबादत कराई के खाक खाक से और राख राख से मिल गई और मैंने कहा दिल दिल से मिल जाएगा जहाँ वो गई। इसके कुछ अरसा बाद मैं मासूम बिली को एक सुबह ले गया और उस वक्त वो छोटा बच्चा था, ये बिल्कुल छोटा बच्चा था और यही सबब है कि मैं उसके साथ लिपटा रहता हूँ और वो मेरे साथ। मैं उसके लिए पापा भी था और मामा भी। मैं उसकी बोतल साथ ले गया था, उसका दूध गर्म करने के लिए रात को आग जलाने का खर्च बर्दाश्त नहीं हम कर सकते थे, इसलिए मैं उसकी बोतल अपनी कमर के नीचे रख लेता था और अपने जिस्म की गर्मी से उसे गर्म करता था। हम बचपन के दोस्तों की तरह एक दूसरे से लिपटे रहते हैं और किसी रोज जब मैं मैदान से रुखसत हो जाऊंगा तो कलाम उसके स्पुर्द करके कहूंगा, बिली जाओ और इस कलाम के साथ खड़े रहना। कुछ लोग हैरान होते हैं कि मैं हमेशा उसको अपने साथ क्यों रखता हूं। मैं उसे छोड़ नहीं सकता, अगरचे उसकी शादी भी हो गई है, लेकिन मुझे अभी तक याद है कि उसकी माँ ने कहा था उसे साथ रखना और हम दोस्तों की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। मुझे याद है कि शहर में फिरते हुए उसकी बोतल मेरी बगल में होती थी और वो रोने लग जाया करता था। एक रात वो हम पिछले सेन में घूम रहे थे जहाँ वो उसे ले लेना चाहती थी, वो उसकी जान लेने वाली थी और मैं, आप जानते हैं कि वो महज एक छोटा लड़का था और मैं सेहन के पिछले हिस्से में बलूत के दरख्त के पास चल फिर रहा था और वो अपनी माँ के लिए रो रहा था और मेरे पास उसकी माँ नहीं थी जिसके पास मैं उसे ले जाता। और मैंने उसे उठाकर कहा, ओ मेरे प्यारे बच्चे, मैंने कहा, उसने कहा, डैडी मेरी माँ कहाँ है, क्या आपने उन्हें उस मैदान में दबा दिया है? मैंने कहा, नहीं मेरे प्यारे बच्चे, वो बिल्कुल ठीक है, वो ऊपर आसमान पर है। एक दोपहर उसने एक ऐसी बात कही जिसने गोया मेरी जान निकाल ली। वो रो रहा था और शाम तक रोता ही रहा था और मैंने उसे इस तरह अपनी कमर पर उठा लिया और अपने कंधों पर बिठा लिया और उसे प्यार से इस तरह थपकता रहा और उसने कहा, डैडी मेहरबानी से जाएं और मामा को लेकर आएं। मैंने कहा, मेरी जान मैं तुम्हारी मामा को नहीं ला सकता, वो तो यस्सू के पास है। उसने कहा, ठीक है तो फिर यस्सू को कहें कि मेरी मामा को भेज दे, मैं उन्हें मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मैं किसी दिन मैं और तुम उनके पास जाएंगे। और उसने रुक रुक कर कहा, डैडी मैंने कहा हाँ बोलो क्या है, उसने कहा मैंने मामा को ऊपर बादलों में देखा है। मेरे अजीजो मेरी तो जैसे जान ही निकल गई हो, मैंने सोचा मेरे खुदाया ये इसने क्या कह दिया है, मैंने अपनी मामा को ऊपर उस बादल में देखा है। मैं बिल्कुल बेदम हो गया और मैंने बिल्कुल इस तरह नन्हे बच्चे को अपने सीने से लगा लिया और अपना सर झुकाकर दुआ में लग गया। दिन गुजरते गए, मैं ये बात फरामोश ना कर सका। मैंने काम करने की कोशिश की और घर में वापस ना जा सका क्योंकि अब कोई घर बाकी रह ही नहीं गया था। मैं कहीं काम करना चाहता था, हमारे पास उस खस्ता फर्नीचर के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन हम दोनों मियां बीवी ने जो वक्त वहां गुजारा था वो अपनी हैसियत रखता था, इसलिए कि वो कभी एक घर था। और मुझे याद है कि एक दिन मैं सरकारी नौकरी पर काम कर रहा था और मैं एक खम्बे पर चढ़ा हुआ था और सेकेंडरी बर्की रूह की तारे लटक रही थी और ये सुबह सवेरे का वक्त था और मैं उस सूली पर चढ़ा हुआ था। मैं अपनी बच्ची को भूल नहीं सका था। मैंने अपनी बीवी की मौत तो बर्दाश्त कर ली थी, लेकिन उस बच्ची की मौत वो तो उस वक्त बहुत ही छोटी थी। मैं खम्बे पर चढ़ा ये गीत गा रहा था। दूर उस पहाड़ी पर एक खुरदरी सूली थी, प्राइमरी बर्की रूह की तारें ट्रांसफार्मर में दाखिल हो रही थी आप जानते हैं, और सेकेंडरी बर्की रूह की तारें निकली हुई थी और मैं उस खम्बे के ऊपर चढ़ा लटक रहा था और मैंने निगाह की तो सूरज मेरी पुश्त की तरफ से तुलू हो रहा था और वहाँ मेरे हाथ बाहर की तरफ फैले हुए थे और सलीब के निशान का साया पहाड़ी के पहलू पर बन रहा था और मैंने सोचा हाँ यस्सु मेरे ही गुनाहों के बाईस सलीब पर चढ़ा। मैंने कहा प्यारी बेटी शारून, डैडी तुमसे मिलने के लिए बहुत तड़प रहा है। प्यारी बेटी, ऐ मेरी नन्नी मुन्नी प्यारी बेटी, मैं एक बार तुम्हें अपने बाजुओं में लेना चाहता हूँ। मैं आपे से बाहर हो गया, कई हफ्ते गुजर चुके थे, मैंने रबर का दस्ताना उतार डाला। मेरे पास से 2300 वोल्ट बिजली गुजर रही थी, मैंने रबर का दस्ताना उतार डाला था। मैंने कहा ऐ खुदा मैं इस काम को पसंद नहीं करता, मैं डरपोक हूँ, लेकिन शेरी डैडी चंद मिनट बाद तुमसे और तुम्हारी मामा से मिलने आ रहा है। मैंने 2300 वोल्ट बिजली को पकड़ने के लिए दस्ताने को उतारना शुरू किया था ताकि ये मुझे खत्म कर दे, हत्ता के आदमी के बदन में खून का नाम भी बाकी नहीं रह जाता। और बस मैंने अपना दस्ताना उतारना शुरू किया तो कुछ हुआ था, जब मैं होश में आया तो मैं जमीन पर इस तरह बैठा हुआ था और अपने हाथ मुंह पर रखे हुए रो रहा था। ये खुदा का फजल था, वरना मैं यहाँ शिफाया इबादत ना करा रहा होता। इस बात का मुझे यकीन है खुदा मेरी नहीं बल्कि अपनी नेमत की हिफाजत कर रहा था। मैं घर की तरफ चल पड़ा, मैंने फौरन इस काम को खैर बात कह दिया और अपने औजार एक तरफ रख दिए और वापस दफ्तर गया और कहा मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं सर्दी से कांपते हुए घर में दाखिल हुआ और एक खत अंदर गिरा हुआ था। हमारा एक ही छोटा सा कमरा था जहाँ मैं छोटी सी चारपाई पे सोया करता था और सर्दी ऊपर आया करती थी और हमारा चूल्हा पुराना था। मैंने खत को उठाया और खोलकर देखा तो ये मेरी बीवी की क्रिसमस बचत के 80 सेंट थे जो मिस शारून रोज ब्रैनम के नाम पर थे। इसी तरह फिर दोबारा मेरी हालत हो गई। मैं खेलों में निगेबान भी रहा था। मैं अंदर गया और अपनी बंदूक को उसकी थैली से बाहर निकाला। मैंने कहा खुदावंद मैं मजीद जिंदा नहीं रह सकता, मैं मर रहा हूँ, मैं अजाब में हूँ। मैंने पिस्तौल का घोड़ा चढ़ाया और तारीख कमरे में घुटने टेक कर पिस्तौल को अपने सर से लगाया और मैंने कहा ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात से आए, तेरी मर्जी पूरी हो। और ऐसा कहते हुए मैंने पूरे जोर से ट्रैगर दबा दिया और मैंने कहा जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। लेकिन उसने पिस्तौल को चलने ना दिया। मैंने दिल में कहा ऐ खुदा क्या तू मेरे टुकड़े कर देगा, मैंने क्या किया है, पता कि तू मुझे मरने भी नहीं देता। और मैंने पिस्तौल को नीचे फेंक दिया और पिस्तौल चल गया और गोली कमरे से बाहर निकल गई। मैंने कहा खुदाया मैं मर क्यों नहीं जाता, इस अजाब से निकल क्यों नहीं जाता, मैं मजीद नहीं चल सकता, इसलिए कि तू मेरे साथ कुछ करने का इरादा रखता है। मैं अपनी छोटी सी पुरानी और गंदी चारपाई पर गोया रोता ही रहा और मैं शायद सो गया था। मैं नहीं जानता कि मैं सो गया था या फिर मेरे साथ क्या हुआ था। मैं हमेशा मगरिब की तरफ तवज्जो देता हूँ और हमेशा उन लोगों की तरह का हैट लेना चाहता था। मेरे वालिद ने अपनी जवानी में घोड़ों के मुंह फेरा दिए थे और मैं हमेशा वही हैट लेना चाहता था। और भाई दिमाग शक्राइन किसी रोज वो मेरे लिए लाए जो कभी मेरे पास था, उस तरह का हैट था जो मगरबी तर्ज के लोगों का था। और मेरा ख्याल है कि मैं किसी घास के मैदान में से गुजरता हुआ ये गीत गा रहा था, एक वैगन का पहिया टूट गया और उस पर लिखा था बराए फरोख्त। और जब मैं आगे जा रहा था तो मैंने एक पुरानी सी छत वाली वैगन देखी जो पुरानी घास के मैदान में खड़ी हुई थी और उसका एक पहिया टूटा हुआ था। बिला शुबा ये मेरे टूटे हुए खानदान की अलामत थी। और जब मैं करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़की थी जिसकी उम्र 20 साल थी और उसके बाल सफेद और उसकी आंखें नीली और वो सफेद लिबास पहने हुए थी। मैंने उस लड़की की तरफ देखकर पूछा, आप कैसी हैं? मैं आगे ही चलता रहा। उस लड़की ने कहा, हेलो डैड। मैं रुक गया और मैंने कहा, क्या डैड? क्यों? मैंने कहा, कौन हो मिस साहबा? कैसे मैं आपका डैड हो सकता हूँ जबकि मेरी और आपकी उम्र बराबर है? उस लड़की ने कहा, डैडी आपको बिल्कुल मालूम नहीं कि आप इस वक्त कहाँ हैं। और मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? उसने कहा, ये फरदोस है। उसने बताया, जमीन पर मैं आपकी छोटी सी बेटी शारून थी। ऐसा क्यों है? मैंने कहा, प्यारी बेटी उस वक्त तुम बहुत छोटी सी बच्ची थी। और उसने कहा, डैडी नन्हे बच्चे यहाँ नन्हे नहीं रहते, वो गैर फानी होते हैं और उनकी उम्र बढ़ती है और ना ही कम होती है। मैंने कहा, ठीक है शारून, मेरी प्यारी बेटी, तुम तो कितनी खूबसूरत जवान औरत बन गई हो। उसने कहा, मामा आपका इंतजार कर रही हैं। मैंने कहा, कहाँ पर? उसने कहा, ऊपर आपके नए घर में। मैंने कहा, कैसा नया घर? ब्रहनम तो खानाबदोश होते हैं और उनके घर वगैरह नहीं होते, वो सिर्फ। मैंने कहा, खैर मेरी प्यारी बेटी, मेरा तो कभी कोई घर ही नहीं था। उसने कहा, लेकिन डैडी यहाँ आपको घर मिल गया है। मैं बच्चा बनना नहीं चाहता लेकिन ये बात मेरे लिए हकीकत है। जैसे ही मैं इस पर सोचना शुरू करता हूँ तो ये सब कुछ वापस आ जाता है। उसने कहा, डैडी आपको यहाँ घर मिल गया है, मैं जानता हूँ वहाँ मेरे लिए घर तैयार है, किसी रोज मैं वहाँ जाऊँगा। उसने कहा, मेरा भाई बिली पॉल कहाँ है? मैंने कहा, बेहतर है, मैंने चंद मिनट पहले उसे मिसिस ब्रोवे के पास छोड़ा। उसने कहा, वालदा आपसे मिलना चाहती है। मैंने मुड़कर निगाह की तो वहाँ बहुत बड़े महल थे और खुदा का जलाल उनके चौगिर जलवा घर था। और मैंने फरिश्तों की एक जमात को ये गीत गाते सुना, मेरा घर प्यारा घर। और मैं लंबे लंबे कदम उठाते और पूरे जोर से दौड़ने लगा। और जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो वो सफेद पोशाक पहने खड़ी थी और लंबे स्याह बाल उसकी पुश्त पर लटक रहे थे। उसने अपने बाजू उठाए। जब मैं काम से थका हारा वापिस आता था तो वो हमेशा इसी तरह किया करती थी। मैंने उसके हाथ थाम लिए और कहा, प्यारी मैंने शारून को इधर देखा है। मैंने कहा, वो बहुत खूबसूरत लड़की बन गई है, क्या ऐसा नहीं है? उसने कहा, हाँ बिल। उसने कहा, बिल? उसने अपने बाजू फैला लिए और उसने कहा, और मेरे कंधे को थाम लिया और मुझे थपकते हुए उसने कहा, तुम मेरे और शारून के मुतल्लिक फिक्रमंद होना छोड़ दो। मैंने कहा, प्यारी मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे बस में नहीं है। उसने कहा, अब शारून और मैं तुम्हारी निस्बत ज्यादा बेहतर हैं। और उसने कहा, मजीद हमारे मुतल्लिक फिक्रमंद होना छोड़ दो, क्या तुम मुझसे वादा करोगे? मैंने कहा, होप। मैंने कहा, मैं तुम्हारे और शारून के बगैर खुद को तन्हा महसूस करता हूँ और बिली हर वक्त तुम्हारे लिए रोता रहता है। मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम कि मैं उसके साथ क्या करूं। उसने कहा, बिल ये सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा, तुम सिर्फ मुझसे वादा करो कि तुम हमारे लिए फिक्रमंद नहीं होगे। और उसने कहा, क्या बैठेंगे नहीं? मैंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो वहाँ एक बड़ी सी कुर्सी मौजूद थी। मुझे याद है कि मैंने एक कुर्सी खरीदने के लिए कितनी कोशिश की थी। अब इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। एक मरतबा मैंने कुर्सी खरीदने की कोशिश की थी। हमारे पास वो पुरानी लकड़ी के पैंदे वाली कुर्सियाँ खाने के सेट के तौर पर थी। हमारे पास बस वही कुर्सियाँ थी जिन्हें हम इस्तेमाल करते थे और हमें वो कुर्सी खरीदनी थी जिसके साथ टेक लगाकर बैठ जाते हैं, जैसे कि मैं नाम भूल गया हूँ कि आराम करने वाली कुर्सी को क्या कहते हैं। उसकी कीमत $17 थी जिसकी पेशगी अदायगी $3 थी और फिर $1 फी हफ्ता जमा कराना होता था। हमने एक कुर्सी ले ली थी और फिर जब मैं काम से फारिग होकर और आधी रात तक बाजारों में और जहाँ जहाँ मुमकिन होता मुनादी करके वापिस आता था और एक दिन मुझसे रकम अदा ना हो सकी और कई दिन गुजर गए और हमसे बंदोबस्त ना हो सका। आखिरकार वो एक दिन आए और कुर्सी उठाकर ले गए। वो रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। उसने मेरे लिए चेरी की कचौरियाँ तली हुई थी। वो तो बेचारी वो जानती थी कि मुझे बेहद मायूसी होगी। और रात के खाने के बाद मैंने कहा, प्यारी आज रात के बारे में तुम कैसा महसूस कर रही हो? और उसने कहा, मैंने हमसायों के लड़कों से कहा था कि तुम्हारे लिए मछलियों के शिकार के लिए केचुए निकाल लाएं। क्या तुम पसंद करोगे कि हम थोड़ी देर दरिया पर जाकर मछलियां पकड़ें? मैंने कहा, हाँ ठीक है, मगर। और उसने रोना शुरू कर दिया। मैं जानता था कि कुछ हुआ है, मुझे पहले ही अंदाजा हो चुका था, क्योंकि उन्होंने पहले ही नोटिस भेजा था कि वो कुर्सी ले जाएंगे, क्योंकि हम हफ्तावार डॉलर जमा नहीं करा सके थे और ना ही हम अदा कर सके थे, और हमसे खर्च पूरा नहीं हो सका था। उसने मुझे अपने बाजुओं के हलके में ले लिया, और जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो मेरी कुर्सी जा चुकी थी। वहाँ पर उसने याद दिलाते हुए मुझे कहा, बिल, क्या तुम्हें वो कुर्सी याद है? मैंने कहा, हाँ प्यारी, मुझे बिल्कुल याद है। उसने कहा, जो तुम सोचते थे क्या वो ये नहीं है? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, खैर, वो इस कुर्सी को नहीं ले जा सकेंगे, इसकी कीमत अदा हो चुकी है। उसने कहा, थोड़ी देर बैठ जाइए, मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ। और मैंने कहा, प्यारी, ये सब कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। और उसने कहा, मुझसे वादा करो बिली, मुझसे वादा करो तुम आइंदा फिक्रमंद नहीं होगे, अब तुम वापस जा रहे हो। और फिर कहा, वादा करो कि आप हमारे लिए फिक्रमंद नहीं होगे। और मैंने कहा, होप, ये मुझसे नहीं हो सकता। और फिर मैं होश में आ गया, और कमरे में तारीकी फैली हुई थी। मैंने इर्द गिर्द देखा और मैंने उसके बाजुओं का लम्स महसूस किया। मैंने कहा, होप, क्या तुम कमरे में मौजूद हो? उसने मुझे थपकना शुरू कर दिया। उसने कहा, बिल, क्या तुम मुझसे वादा कर रहे हो? वादा करो तुम फिक्रमंद नहीं होगे। मैंने कहा, मैं वादा करता हूँ। और फिर मुझे दो या तीन मर्तबा थपकियां देकर गायब हो गई। मैं उछल कर खड़ा हो गया और बत्ती जलाई और हर तरफ देखा, लेकिन वो जा चुकी थी। लेकिन वो सिर्फ कमरे से बाहर चली गई थी। वो मुर्दा नहीं है, बल्कि वो अब भी जिंदा है। वो एक मसीही खातून थी। कुछ अरसे बाद मैं और बिली ईस्टर की सुबह उसकी माँ और बहन के लिए फूल चढ़ाने के लिए कब्रिस्तान गए, और हम रुक गए। मासूम बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, और उसने कहा, डैडी, मामा यहाँ है। मैंने कहा, नहीं मेरे प्यारे बेटे, नहीं, तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है, और ना ही तुम्हारी बहन यहाँ है। हमारे पास यहाँ ढकी हुई कब्र है, लेकिन दूर समंदर पार एक खुली हुई कब्र है, जिसमें से यीशु जी उठा, और किसी रोज यीशु आएगा और तुम्हारी बहन और माँ को साथ ले जाएगा। दोस्तों, आज मैं मैदाने जंग में हूँ। मैं अब कुछ नहीं बता सकता। मैं, खुदा आपको बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। ऐ खुदावंत, मुझे यकीन है खुदावंत कि बहुत दफा लोग समझ नहीं पाते जब वो ख्याल करते हैं कि ये चीजें आसानी से आ जाती हैं, लेकिन एक अजीम दिन आ रहा है जब यीशु आएगा और ये तमाम दुख दर्द दूर हो जाएंगे। आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ कि तू हमारी मदद फरमा, ताकि हम तैयार हो सकें। उस सुबह मैंने उसके रुखसार को चूमकर मैंने उससे आखिरी यही वादा किया था कि उस अजीम रोज मैं उससे मिलूंगा। मुझे यकीन है कि वो उस स्तून के करीब खड़ी होगी, मेरा नाम पुकार रही होगी। मैंने वादा निभाने की अब तक पूरी कोशिश की है खुदावंद। पूरी दुनिया में तमाम किस्म के मकामात पर मैंने अंजील को पेश करने की कोशिश की है। बड़ापे और थकावट ने अब मेरे हौसले को पस्त कर दिया है। अब किसी रोज बाइबल को आखिरी बार बंद करूंगा, और मेरे खुदा, मुझे इस वादे पर कायम रख। खुदावर, तेरा फजल मेरे चौगिर्द मौजूद है। मैं इस जिंदगी की चीजों को ना देखूं, बल्कि आने वाली चीजों की खातिर जिंदा रहूं। दयानतदार रहने में मेरी मदद कर। जब मेरे मसीह ने दुख उठाकर जान दे दी थी, तो खुदावंद, मैं आसानी से आराम के लिए फूलों की मसहरी नहीं पा सकता, क्योंकि बाकी मुकद्दस लोगों ने भी इसी तरह जान दी थी। मैं किसी तरह की आराम की चीज नहीं मांग रहा खुदावंद, मुझे पूरी तरह दयानतदार और वफादार बना। बख्श दे कि लोग मुझसे मोहब्बत करें, ताकि मैं तेरी तरफ उनकी रहनुमाई कर सकूं। और जब एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और हम सदा बहार दरख्तों के नीचे इकट्ठे होंगे, तो मैं उसका हाथ पकड़कर एंजल्स टेंपल के लोगों और तमाम दूसरी चीजों को दिखाने के लिए ले जाना चाहूंगा। तब ये एक बहुत अजीम वक्त होगा। मैं दुआ करता हूँ कि तेरी रहमतें हम सब पर ठहरी रहें, और जो यहाँ हैं, खुदावन, शायद वो तुझसे कभी वाकिफ भी ना थे, और शायद किसी का अजीज समंदर पार हो, अगर उन्होंने अभी तक वादा पूरा नहीं किया, तो खुदावन बख्श दे कि ये अब ऐसा करें। जबकि हम अपने सरों को झुकाए हुए हैं, तो आज सुपहर इस इतने बड़े समात खाने में कितने लोग हैं जो कहेंगे, भाई ब्रैनम, मैं भी अपने अजीजों से मिलना चाहता हूँ, मेरे कुछ अजीज दरिया के पार मौजूद हैं, शायद आपने वादा किया कि आप उनसे मिलेंगे, शायद उस रोज जब आपने अपनी माँ को कब्र पर खुदा हाफिज कहा था, या शायद अपनी छोटी बहन को खुदा हाफिज कहा था, या अपने वालिद या किसी और को कहा था, आपने उनसे मिलने का वादा किया हो, और अभी तक अगर आपने उसकी तैयारी नहीं की, क्या आप ये नहीं समझते कि अब ये तैयारी का वक्त है? मैं अपने रोने पर माजरत चाहता हूँ, लेकिन ओ मेरे खुदाया, आप ऐसा महसूस नहीं करते, आप नहीं जानते कुर्बानी क्या है। ये तो जिंदगी की कहानी का मुश्किल से एक नुक्ता भी नहीं है। आप में से कितने हैं जो उठेंगे और दुआ के लिए यहाँ आकर कहेंगे, मैं अपने प्यारों से मिलना चाहता हूँ? सामीन में से उठकर यहाँ आइए। क्या आप ऐसा करेंगे? अगर आपने अब तक ऐसा नहीं किया, तो तैयारी करें। जनाब, खुदा आपको बरकत दे। मैं एक बुजुर्ग उम्र रसीदा सियाफाम शख्स को आते हुए देख रहा हूँ, और लोग भी आ रहे हैं जो बालकनियों में बैठे हुए हैं। अपनी जगहों से हिलें और नशिस्तों के दरमियानी रास्ते से आ जाएं, या जो आप चाहते हैं कि उनको दुआ में याद रखा जाए, उठकर खड़े हो जाएं। ये बात है, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, ये अच्छा है, हर तरफ से खड़े हो जाएं, जो ये कहना चाहेंगे, मेरे वालिद वहाँ पर हैं, मेरी वालदा या कोई और प्यारा वहाँ मौजूद है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, क्या आप उठेंगे? आप सामीन के दरमियान जहाँ भी हैं, सिर्फ अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, अपने कदमों पर खड़े होकर कहें, मैं कबूल करना चाहता हूँ। खातून, खुदा आपको बरकत दे। खुदा पीछे खड़े हुए आदमी को बरकत दे। खुदावन आपको बरकत दे। जनाब, खुदा आपको बरकत दे। ये दुरुस्त है, जो बालकनी में है, खुदावन उनको बरकत दे। दुआ के लिए लफ्ज अदा करने के लिए चारों तरफ, अब आप जहाँ भी हैं, खड़े हो जाएं। जबकि रूल कुछ यहाँ मौजूद है, और हमारे दिलों को शिकस्ता करने के लिए इन पर जुम्बश कर रहा है। आप जानते हैं, अब कलीसिया के दिलों को टूटने की जरूरत है, हमें कुम्हार के घर जाने की जरूरत है, क्योंकि हमारा खुद साख्ता इल्मे इलाहियात कभी काम नहीं आएगा। हमें पुराने तर्ज से दिलों पर चोट खाने, दिल से तौबा करने और पुख्तगी से खुदा की तरफ माइल होने की जरूरत है। क्या सब लोग खड़े होने के लिए तैयार हैं? तो आइए हम अपने सरों को दुआ के लिए झुकाते हैं। ऐ खुदावंद, तू जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर दिया, ताकि हमें ईमान लाने से रास्तबाज ठहराए। खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ कि जितने लोग इस वक्त तुझे कबूल करने के लिए अपने पांव पर खड़े हुए हैं, मैं दुआ करता हूँ कि उनको तू माफ कर दे। और ऐ खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ कि ये लोग तुझे अपना नजात दहिंदा, बादशाह और महबूब कबूल करें, और शायद किसी का बाप या किसी की माँ या कोई और दरिया पार वहाँ मौजूद हो। एक बात ये यकीनी है कि अब इन लोगों ने एक नजात दहिंदा को पा लिया है, ताकि इनके गुनाह माफ किए जाएं और इनकी नाफरमानी और खता उतर जाए, और इनकी रूहें बरे के खून से धुल जाएं, और आज से लेकर ये लोग हमेशा सलामती में जिंदगी बसर करें, और किसी जलाली दिन जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, बख्श दे कि हम तेरे घर में जमा हों और गैर परागंदा खानदानों की सूरत में अपने अजीजों से मिलें जो दूसरी तरफ इंतजार कर रहे हैं। इस बात के साथ इन्हें तेरे सुपुर्द करते हैं कि जिसका दिल खुदा के साथ ठहर चुका है, तू उसे कामिल सलामती में रखेगा। खुदावंद ये बख्श दे, हम इन्हें तुझे सौंपते हैं और तेरे बेटे खुदावंद यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदा आपको बरकत दे। मुझे यकीन है कारकुनों ने देख लिया है कि आप कहाँ खड़े हैं और वो चंद मिनटों में आपके पास पहुँच जाएंगे। और अब वो लोग जिन्होंने दुआया कार्ड लेने हैं, बिली, जेन और लियू कहाँ हैं? क्या वो पीछे मौजूद हैं? वो यहाँ मौजूद हैं कि चंद मिनटों में दुआया कार्ड तकसीम करें? भाई दुआ के साथ लोगों को रुखसत करेंगे और दुआया कार्ड बांटे जाएंगे। थोड़ी ही देर बाद बीमारों के लिए दुआ करेंगे। ठीक है भाई।